हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक को देखा था। सब लोग मेरे साथ में गाइए, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्त्वम् गृहेषु गृहमेधिनाम। राजेन्द्र, हे राजाओं में सर्वश्रेष्ठ परीक्षित महाराज, श्रोतव्यादीनि नृणाम संति सहस्रशः, श्रोतव्य सुनने के संबंध में या सुनने के संबंध में, बोलने के लिए इत्यादि सब में इंसानों के लिए हजारों विषय हैं। क्यों भाई? अपश्यताम आत्म तत्वम, वह आत्मा के तत्व को, परमात्मा के तत्व को नहीं समझते हैं, देखते ही नहीं, उसका अनुभव भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? गृहेशु गृह मेधिनाम, गृहेशु मतलब गृह में, गृह मेधिनाम, गृह मेधि के मतलब जिसकी बुद्धि घर में ही लगी हुई है, घर का अर्थ था पत्नी बच्चों में ही लगी हुई है। यहां बात अजीब सी होगी, ये अगर ऐसा कह दिया जाए कि अब गृहस्थी ही एकदम जंजाल है तो थोड़ा गलत बात है। गलत मतलब जंजाल तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग गृहस्थी में प्रवेश नहीं करेंगे, तो क्या वह इनका निस्तार नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन आइडिया इज वेरी सिंपल कि अपश्यताम आत्म तत्व होकर के गृहस्थाश्रम में नहीं प्रवेश करना है, और स्मरण रखना है कि उसका स्वरूप ही है कि थोड़ा सा आत्म तत्व के प्रति व्यक्ति अपश्यताम हो जाए। मेरी भाषा समझ रहे हैं सब लोग? चोर की तरह प्रवेश करना है, और गृह में मेधा नहीं लगानी है। गृहस्थी में भी व्यक्ति इसलिए स्वीकार करे, प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोल रहे थे गृहस्थ और गृह मेधी इसलिए स्वीकार करे ताकि वे भक्ति में आगे प्रगति कर सके। ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद आश्रम परमम ममा। ये नया श्लोक हो जाएगा। जिस आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके व्यक्ति वापस लौटता नहीं है, उसमें उनकी हेल्प कर दीजिए, कोई पता नहीं कैसे शरण करते हैं। तो ऐसे आश्रम में प्रवेश व्यक्ति को इस प्रकार से नहीं प्रवेश करना चाहिए। एक बार पूछा गया था हिज होलनेस जयद्वित महाराज को, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गृहस्थ आश्रम, टू गेट आउट ऑफ इट। ये उत्तर था, समझ ले कि दुख है और उसके बाद कम से कम वानप्रस्थ और संन्यास, एटलीस्ट वानप्रस्थ की तरफ जाने का प्रयास करें। तो गृह मेधि में मेधि शब्द का क्या अर्थ लिया गया था? हिंसा और बुद्धि दोनों। तो बुद्धि केवल इसी में, पैसा कमाने में इसमें और बच्चों को पालने में ही लगनी नहीं चाहिए, केवल इसमें ही नहीं लगनी चाहिए। अर्थात समरी में अगर इसको बोला जाए, ये सब बातें बोल रहे हैं 2, 3 और 4 श्लोक का, क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में। और ये भी बताया गया कि जो स्वाभाविक कार्य हैं ये अनर्थकारी होते हैं, ये सब भी बताया जा रहा है। और ये भी समझना होगा कि व्यक्ति भले पढ़ाई करे, गृहस्थी में जाए, जाए कुछ भी जाए, लेकिन धर्म छोड़ करके नहीं करे। और एक और आपको बात अनुभव भी होगी, चाहे हमारे सामने जो माता जी लोग हैं वो हों, चाहे प्रभु जी लोग हों, अगर आप लोग 5 साल 6 साल भागवत सुने, जप करें, तो क्या आप लोग भी उसी प्रकार का गृहस्थ जीवन जी सकेंगे जैसे बाहर के लोग जी रहे हैं? जिसमें एक कॉमन सेंस नहीं? हमारे जूम पर भी कितने सारे डिवोटीज हैं जो भले भक्ति में नहीं भी आए थे, अब नियमित रूप से भगवान के बारे में श्रवण करना है, और शाम को सास बहू की सीरियल तो नहीं देखेंगे कोई माता जी। मेक सेंस? ठीक है, घर बच्चों में थोड़ी आसक्ति स्वाभाविक सी बात है, और पति की सेवा करना सब कुछ है, लेकिन ये तो नहीं भूल जाएगा ना कि मुझे जीवन का उद्देश्य क्या है। अपश्यताम आत्म तत्वम नहीं होगा व्यक्ति, ओके फाइन। बल्कि अब खैर ये उदाहरण तो बड़ा एक्सट्रीम है कि शिव जी कथा करते रहते हैं और वो गृहस्थ हैं, पार्वती जी पास में बैठी रहती हैं, और बड़े बड़े ब्रह्मचारी और सन्यासी उनको सुनते हैं, नारद जी इत्यादि, तो बात नहीं। और हाँ, इसमें आप आगे भी सुनेंगे, मनु महाराज भी स्वयं वो मनु भी गृहस्थ हैं, लेकिन वो पूरा एक मनवंतर भगवान की कथा में लगा दिया। और इसी प्रकार से अम्बरीश महाराज के बारे में भी आप जानते हैं, युधिष्ठिर महाराज के बारे में जानते हैं। तो ये अपश्यताम आत्म तत्व वाले लोगों के बारे में बोल रहा है, जो आत्म के तत्व से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं, उनको लगता है ये सब करने की जरूरत ही क्या है। तो अब उसी को और क्लियर कर रहे हैं कि किस प्रकार से उसका समय दिन और रात में इस अपश्यताम आत्म तत्व की स्थिति में ही बीत जाता है, किस प्रकार से उसका जीवन कभी आत्मा के तत्व के खोज में, अन्वेषण में लगता ही नहीं, कहां कहां व्यर्थ हो रहा है वो देखिए। मेरे पीछे कोई बोलने वाला है? हाँ निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवाये न च वा वयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा
निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवाये न च वा वयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा
निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवाये न च वा वयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा
निद्रयार्यते नक्तं व्यवायेन च वा वयः दिवाचार्ते हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा
निद्रयार्यते नक्तं व्यवायेन च वा वयः
निद्रयार्यते नक्तं व्यवायेन च वा वयः
दिवाचार्ते हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा
दिवाचार्ते हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा
निद्रयार्यते नक्तं व्यवायेन च वा वयः
निद्रयार्यते नक्तं व्यवायेन च वा
दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा
दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा
ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ गृहमेधि का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। अनुभव देखिए, राजन मतलब हे राजा परीक्षित महाराज। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ नक्तम रात्रि में वा या तो निद्रा यानी सोने में वा यानी अथवा व्यवायेना स्त्री प्रसंग में च अर्थात तथा दिवा यानी दिन को अर्थ इहया आर्थिक विकास में च तथा कुटुंब पारिवारिक सदस्यों के भरणेना यानी पालन करने में वया ह्रियते अपने जीवन की अवधि को नष्ट कर देते हैं। संस्कृत देखिए बड़ी सुंदर सुंदर गाते हैं यहाँ पे महाराज बोले हैं उसको हम रखेंगे। वैसे तो यहां पे अन्वय में कहा गया है कि पूरा जीवन ही व्यर्थ कर दे रहे हैं। एक अर्थ है कि रात्रि को सोने में यानी या फिर स्त्री संग में और दिन को पैसा कमाने में और कुटुंब भरण में व्यर्थ कर देते हैं। एक अर्थ समझ में आ रहा है, जो उनकी जीवन है मनुष्य का वह ह्रियते वह छीन लिया जाता है उनसे। किससे, किस प्रकार से? रात में सोने से या स्त्री संग करने में और दिन में पैसा कमाने में या कुटुंब के भरण में। लेकिन एक और अर्थ से आप देख सकते हैं, निद्रा ह्रियते नक्तम, रात्रि में सोने में अपना समय व्यर्थ कर देता है। सोने से व्यक्ति कौन से पुरुषार्थ की प्राप्ति करेगा? अहम मजाक नहीं बना सकते कि मैं भी सोता हूं और सब लोग को सोना ही पड़ता है, लेकिन एक नियत मात्रा से अधिक सोना यह बहुत बड़ा नुकसान है। ना आतो आध्यात्मिक और ना ही भौतिक किसी प्रकार की प्राप्ति नहीं होती, और सोना कोई बहुत बड़ा सुख नहीं है। शरीर की आवश्यकता है और उसके बिना आपकी बुद्धि चलने वाली भी नहीं, तो सोना पड़ता है। लेकिन यह नहीं कि 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा यहां तक कि 12 घंटा ही सोते हैं। महाराज इस पे उदाहरण दे रहे थे कि देखो भाई, अगर मान लो कोई व्यक्ति 6 घंटा सोता है या 8 घंटा सोता है, जो भी 8 घंटा मान लीजिए, 8 घंटा ठीक है, और वो 100 साल जिया, तो यानी कि 24/8 is 3 इज इट नॉट 1/3, 30 साल वो नॉन स्टॉप सोता रहा। कोई सोचा हमने इस तरह से? बिना सोए तो हम नहीं रह सकेंगे, इसलिए 6 घंटा 7 घंटा मैक्स 6 to 7 hours बोला गया है। आपको बीमार है तो एक अलग बात है, लेकिन सामान्य स्थिति में इतना ही सोने के लिए बोलते हैं, और वह भी इसलिए ताकि व्यक्ति आगे भजन कर सके। भाई आप लोग भी तो टाइम सोने का प्रयास करते हैं ताकि हम लोग मंगल आरती के समय सोते ना रहें, ये जो नींद है वो जप में पूरी ना करें, या भागवत क्लास में तो बहुत अच्छी नींद आती, स्लीप वेल नहीं, लेकिन भागवत में नहीं पूरी करें। तो एक अर्थ समझ रहे हैं, नींद पूरी तरह से समय की व्यर्थ है, इसलिए छीन रहे हैं उसका समय, कुछ नहीं कर पाएंगे। ना आध्यात्मिक रूप से आप कुछ कर सकते हो, ना भौतिक रूप से कर सकते हो, लेकिन सोना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। व्यवाये न चा वयः, वयः मतलब उम्र, समय, तो वयः ह्रियते उसकी आयु छीन ली गई। किस प्रकार से छीन ली गई? सोने में या स्त्री प्रसंग में। तो स्त्री प्रसंग केवल स्त्री भोग मैथुन की बात ही नहीं हो रही है, ये तो दृष्ट है कि लोग आते हैं। अब ये जो लोग जब बोला जा रहा था तब तो वो घटित नहीं होगा, लेकिन महाराज बता रहे थे स्त्री प्रसंग का मतलब है आते हैं लोग और पत्नी के संग बैठ करके सीरियल देखते हैं या फिर जाड़े में मूंगफली छीलते हैं, क्या मूंगफली छील रहे, प्रजल्प चल रहा है, और आगे बोलते हैं चैटिंग कर रहे हैं, हो सकता हो स्त्री संग नहीं कर रहे तो किसी प्रेमिका से कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। जरूरी नहीं कि स्त्री जो है पति पत्नी ही हो, प्रेमिका से चैटिंग कर रहे हैं, ये सब नहीं चल रहा है क्या आजकल? तो आयु जा रही ना व्यर्थ, स्मरण वहां कृष्ण का तो हो नहीं रहा है कि जिस प्रकार से रुक्मिणी प्रेम करती थी कृष्ण, ऐसा तो कोई स्मरण नहीं हो रहा है, भूले हुए हैं अपने आत्म तत्व को। Does that make sense? अब इसको दूसरे एंगल से भी बताया गया है। देखिए, जो व्यक्ति जितना भोग में रत होता है स्त्री संग में, उसकी आयु और जल्दी कम हो जाती है। पुरुषों का जो वीर है वह उनके खून से बनता है, तो खून इस प्रकार का एंजॉयमेंट के लिए भोग करना ये ऐसा ही है जैसे ऊंट का कांटों को खाना और कहीं बड़ा टेस्टी है, लेकिन जब ऊंट कांटों को खाता है तो उसका वो कांटे उसके ही जीव को काट देते हैं, तो वो जब उसके खून से मिल जाता है, खून में उसकी अब उसकी जीव का ही खून या मुंह का ही खून का आस्वादन वह जीव से करता है, कहता है बड़ा अच्छा टेस्ट है। तो ये स्थिति है। जो लोग इस प्रकार से भोग में प्रवृत्त होते हैं वो आप देखेंगे, कुछ लोग प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम थोड़ा कठोर या बोपल्ली बोल रहे हैं, एक्चुअली प्रभु जी लोग होते तो हम थोड़ा और क्लियरली बोल पाते, लेकिन फिर भी हम बोलने का प्रयास करेंगे जितना है। प्रभुपाद बोलते हैं, यंग पीपल आर सो अकस्टम्ड दे कैन नॉट स्लीप विदाउट हैविंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि जब तक स्त्री से संग नहीं करेंगे उनको नींद नहीं आएगी, सो ही नहीं सकेंगे, दे आर सो अटैच्ड। तो ये सारी स्थिति है, और इस प्रकार से अपना कितना जीवन अपना शक्ति व्यर्थ कर दे रहे हैं ये वो समझ नहीं पाते। ये तो बात मतलब लोगों को बताता भी नहीं है, और अगर कोई बोले तो हंसते हैं लोग। फिर महाराज उदाहरण दे रहे थे किस प्रकार से, वो अमेरिका का उदाहरण दे रहे थे, कह रहे थे कि अमेरिका में लोग कहीं महाराज किसी लेक पे गए होंगे, कोई लेके गया तो कहा कि वही वहां पुरुष जो है केवल चड्डी पहन के घूम रहे हैं और धूप में सेक रहे हैं अपने आप को। तो महाराज के भाई धूप क्यों सेक रहे हैं? कहते हैं जो सफेद हैं ये अपने आप को लाल करना चाहते हैं। उसी प्रकार से स्त्रियां भी घूम रही थी, कहते कोई लज्जा नहीं है और वहीं बैठ करके माला पकड़कर जप करते कि भाई ये जो लेक है ये झील है भगवान की विभूति है, यहां बैठ के भजन करें तो कितना फायदा होता, समय का व्यर्थ है कि नहीं? और आप अब अगर आप ना समझे तो सोचिए वहीं बगल में कोई कुत्ता खड़ा हो और वह भी धूप सेक रहा है, समझ में आया? चलिए इसमें मजा नहीं आएगा, कुत्ता नहीं गैंडा अच्छा लग रहा है, हिप्पोपोटामस। मान लो उसी लेक में कोई हिप्पोपोटामस, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हिप्पोपोटामस खोलता है मुंह और धूप में खड़ा रहता है, चलो वो भी उदाहरण ना समझ लीजिए। मगरमच्छ, तो मगरमच्छ को आप देखेंगे प्राय वह इसी प्रकार से पड़े रहते हैं और धूप सेकते रहते हैं, हमने देखा है कभी? हाँ, ये बहुत फेमस है, उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी तरह मगरमच्छ मगरमच्छी की तरह लोग पड़े हुए हैं, क्या यही मानव जीवन का लाभ है? उसी वया को उसी आयु को अगर भगवान की सेवा में लगाते तो कितना अच्छा होता, लेकिन व्यर्थ गया ना। हिरियते मतलब छीन ली जा रही है, तो क्योंकि हमारी आयु कहां छीन ली जा रही है। मान लो 100-200 रुपए आपके पास थे, 100 ही रुपए मान लीजिए, तो उसका उपयोग आप कर सकते थे ना, छीन लिया का मतलब क्या हुआ? उसका उपयोग आप अपने लाभ के लिए नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात एक भक्त बता रहे थे एक आचार्य जी को, शायद वल्लभाचार्य जी को कोट करते हुए, कि हमारी इंद्रियां डकैतों की तरह है, दस्यु समझते, दस्यु डकैत की तरह जो हमारा मनुष्य जीवन रूपी समय को छीन ले जाती है। उस धन का उपयोग हम भगवान की सेवा में करके भगवान के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन छीन लेते हैं अगर इंद्रियां असमित रहती हैं। तो ये पहली लाइन तो क्लियर हो रही है, चलो भाई रात डिस्टर्ब हो गई कोई बात नहीं, दिन तो बचे, दिन तो हम जप करने में लगाएं। एक भक्त बोल रहे हैं, बास्किंग इज एक्सेप्टेड प्रोसीजर इन नेचुरोपैथी, हम प्रशांतम रहना चाहते, आप भजन कर रहे हैं कि किसी भोग पार्टी में है, क्या ये जरूरी है कि काला हो, और ये जरूरी है कि स्त्री और पुरुष नग्न होकर के वहां पर बैठे, यही नेचुरोपैथी है कि यही नेचुरोपैथी है? बोलने से पहले कमेंट करने से पहले सोलह सोच लेना चाहिए कि क्या बात आप कर रहे हो। भारतीय लोग अपना कल्चर नहीं छोड़ते हैं, और यहां तो हमारी नेचुरोपैथी अपने आप ही होती है, इतनी धूप लगती है कि वैसे काले हो जाते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं? कपड़े सहित काले हो जाते हैं, तो कपड़ा उतार के काले होने की जरूरत नहीं है, ये समय की व्यर्थता है, नितांत दुरुपयोग है समय का। और उससे क्या कोई सुख मिल जाएगा? हाँ, कमंड कह रहे कि ये तो नेचुरोपैथी है, देख रहे हैं। भागवत सुनने क्यों आ रहे हैं? उनको समझ नहीं आता, नेचुरोपैथी में जाइए फिर करिए। भागवत तो प्रथम क्यों आ रहे हैं? मुझे देखना भी नहीं चाहिए था कमेंट। एनी बेस, तो इस प्रकार से नींद खराब हो गई, सॉरी नींद नहीं खराब हुई, रात्रि खराब हो गई। और दिवा दिन में क्या कर रहे हैं? दिवा चा अर्थ हया राजन, हे राजन वह पैसा कमाने में लगे हुए हैं। कितने लोग मैं देखता हूं जिनका कार्य 10 बजे शुरू होता है और 7-8 बजे तक खत्म हो जाता है रात में, मान लीजिए, तो आराम से पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन वहां नहीं करेंगे, केवल समय व्यर्थ करेंगे। 8 बजे आएंगे फिर खाएंगे, उसके बाद 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक कुछ टाइम बर्बाद करेंगे, फिर उठेंगे, फिर 9 बजे, 9 बजे तो ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, 9 बजे ब्रह्म मुहूर्त, नॉट ब्रह्म, ब्रह्म, जब ब्रह्म कंटिन्यू कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा उसका, फिर खाया पिया डकारा, उसके बाद चल दिए फिर क्लास। इट्स अमेजिंग। और मान लो शनिवार इतवार को छुट्टी मिल जाएगी, भाई रात्रि चलो वेस्ट कर दी, रात्रि तो पूरा हफ्ते वेस्ट करना है, और शनिवार इतवार में अगर काम करने को नहीं रहता है तो कुटुंब भर लेने वा, बच्चे को लेके जाएंगे, पिकनिक लेके जाते हैं, शॉपिंग लेके जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये तो हम लोग सबने देखा ही है कि माता पिता जब फ्री होते थे शनिवार इतवार को, बच्चे लोग खूब तड़े रहते थे कि यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, होटल जाएंगे, ये सब कर्मी जीवन में तो भारतीय समाज में भी होता है। दिन में तो पापा, दिन में मतलब वीकडेज में तो माता पिता नहीं मिलते हैं, तो अब बताइए कि उस समय कहां है। इसीलिए ये सब क्यों? भक्ति करने की जरूरत क्या है? आज हम एक भक्त को प्रेम भी कर रहे थे और डांट भी रहे थे, इस तरह से कह रहे थे कि हमारे घर में माता जी भक्ति नहीं करती हैं, जबकि वो लड़का कमाने लग गए, अब उन्हीं पे आश्रित है माता जी, हम उनको बताएं धोती कुर्ता पहनेंगे, ये करेंगे, तुमको अपराध लग तो नहीं लगेगा माँ को? हमने कहा भाई पिताजी आपके हैं नहीं, ध्यान से सुनिएगा ये बात, सिद्धांत समझ चाहिए, पिताजी नहीं है तो लड़का बिल्कुल पिता जैसे कार्य करता है। डज दैट मेक सेंस टू यू? माँ को लड़के की बात माननी चाहिए, ऑब्वियसली लड़का दारूबाज नहीं होना चाहिए, धर्म जानने वाला हो तो उसको बात माननी चाहिए। समझ में आ रहा है? जब पैसा कमाते हैं तो माता पिता की बात नहीं मानते हैं, समझ में आ रहा है? आपका नाम नहीं बोल रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? आंखों में आंखें देके बोल रहा, समझ आ रहा है? कुछ नहीं सुनना होता, ये सारे टेक्निक हम तब बोलते हैं, पिता माता की बात तब तक मानो, हरे कृष्ण मत करो, ठीक है मम्मी बिल्कुल नहीं करूंगा, चुपचाप करते रहो, तब तक चलते रहता है जब तक कि माता पिता पे आप इकोनॉमिकली आश्रित हैं। जब आप इकोनॉमिकली आश्रित नहीं हैं तो बिल्कुल क्या कह सकते हैं, जंग छेड़ने की जरूरत नहीं, हम करना है बस, धोती कुर्ता पहनेंगे, कुछ भी पहनेंगे। आप लोग लगता है कि हम बड़ी अजीब सी बात बोलते हैं, अब आपको मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। हमारे ही भक्तों के ग्रुप में हमारे एक भक्त है, वो मुझे बता रहे थे कि उनकी माँ भी जब में आती है कि उनके भाई अमरीका जा रहे हैं, क्यों? ये भारत जो है उनकी लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, अमेरिका बहुत सेफ है, एक तो ये कारण है, और पिता माता की स्थिति मरणासन है, उनको छोड़ करके जा रहे हैं। तो ये तो कर्मी लोग कर रहे हैं, ऐसा करने के लिए हम बोल रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, धर्म करने के लिए बोल रहे हैं। भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए कि माता पिता जो बोल रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं तो हम भक्ति करना छोड़ दें। यानी हम थोड़ा बात ड्रिफ्ट कर गए, भाई हम ड्रिफ्ट नहीं कर गए, हम बात ये कर रहे हैं कि कुटुंब भरण ही नवा, लोग केवल कुटुंब का भरण कर रहे हैं। और समझना जी, कुटुंब का अर्थ समझते, कुटुंब का अर्थ है, कु शब्द से अर्थ आशय यह है कि बुरे कार्य करके भी जिसका पोषण किया जाए, इसे कुटुंब कहते हैं, विजय कुटुंब, सुन चुके हैं हम लोग, ठीक है, कुछ गलत कार्य करके पोषण कर रहे हो, लेकिन अगर वह परिवार भजन नहीं कर रहा है तो कैसा इन्वेस्टमेंट है? क्या नुकसान नहीं हुआ? तो किस प्रकार से उनकी आयु छीन ली जा रही है? रात्रि में सोने से, या फिर स्त्री प्रसंग आदि में, दिन में पैसा कमाने से, और शनिवार इतवार को कुटुंब भरण से। और अगर यह भी कह दिया जाए कि मान लो शनिवार इतवार में नहीं कर रहे, तो यह भी होता है कि माँ या पिता को शाम के समय या दिन के समय जाके सब्जी खरीद के लाना पड़ता है, खाना बनाता है, लेकिन यह विचार नहीं करते कि इन बच्चों को हम पाल क्यों रहे हैं। अच्छा, मैं एक प्रश्न गृहस्थ भक्तों से करना चाहूंगा, और आपको वो उत्तर नहीं देना जो भागवत में है, और ना तो मैं आप लोग किसी को डांटूंगा, आपके भी बच्चे हैं ना, है तो बच्चे अब तो भक्त बन गए। जब आप भक्त नहीं थे, एकदम ठंडे दिमाग से हम कोई मजाक नहीं बना रहे, मैं एक उत्तर ढूंढना चाहता हूं कि क्यों बच्चे पालते हैं, आप लोग क्या किस विचार को लेकर के पाल रहे थे? आप एक ऑनेस्ट उत्तर दीजिए कि क्यों कर रहे थे, माइक पर बताइए। मैं बिल्कुल नहीं डांट रहा हूं, मैं एक पब्लिक ओपिनियन ले रहा हूं। माइक आपके पास है, जस्ट है कि आप लोग संतान को क्यों पाल रहे थे, जस्ट आप वो समय बताइएगा, मत आराम से बताइए, कभी हम कोई घबरा डांटने वाटने की बात नहीं, क्यों हम पाल रहे थे बच्चों को।
बच्चों की अच्छी परवरिश करना हमारी जिम्मेदारी है।
हाँ, यही मैं उत्तर सुनना चाह रहा था कि माता पिता ही मानते हैं कि बच्चों की परवरिश करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु जी को दीजिए, ब्रजेंद्र प्रभु को माइक। इसे गुड, बस सिंपल ऑनेस्ट उत्तर है। हाँ बताइए, बच्चों को, आपको तीन बच्चे हैं तो बच्चे क्यों पाल रहे थे। हाँ
मतलब बच्चे इसलिए पाल रहे थे प्रभु जी, जैसे बच्चे पढ़ लिख जाएं और अच्छी मतलब।
वेरी गुड, तो दोनों जगह से क्या उत्तर आया कि बच्चों के कुछ आगे भविष्य अच्छा हो जाए, ये बात है ना। बस इसमें यही अच्छे माता पिता का यही एक उद्देश्य होता है, बस सिंपल सी बात है। हाँ आप तो ब्रह्मचारी हो, आपको कोई उत्तर नहीं है, थ्योरी वाली बात नहीं कर रहा मैं, थ्योरी वाली बात ठीक आगे आके बैठ ये प्रश्न गृहस्थों के लिए, गृहस्थ डिस्कशन हो रहा है यहाँ। क्या माइक दीजिए इनको, माँ के बारे में बता रहे।
जैसे मेरे भाई को शादी नहीं करनी थी तो मेरी माँ को मतलब क्यों जबरदस्ती करो, कह रहे समाज क्या बोलेगा, एक लड़के को बाबा बना दिया इसकी भी शादी नहीं करवा।
ये भी
वो समाज को दिखाने के
लिए भी हो सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा था कि जब बच्चों को पैदा कर दिया तब उसके बाद उन्हें क्यों पाल रहे, तो उत्तर दोनों तरफ से एक ही आया। वेरी गुड, लेकिन आप देखें कठिनाई यह है कि पता नहीं चलता है कि बच्चों को बड़ा करके या कैसे शिक्षा दे जिसके द्वारा वह सुखी हो जाए। ये कठिनाई परंपरा में चली आ रही, क्योंकि माता पिता को बताया नहीं गया तो बच्चों को भी इस प्रकार से नहीं बता पाएंगे। तो कुटुंब भरण क्यों हो रहा है, उद्देश्य तो इच्छा तो बहुत अच्छी है कि बच्चों का हित हो, है कि नहीं, बच्चे स्वस्थ हों, लेकिन किस लिए कर रहे हैं नहीं पता। और इसका पता परिणाम क्या होगा, परिणाम यह है कि बच्चे भी यही बोलेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। देखिए हम थोड़ा सा अजीब सी बात बोलेंगे, लेकिन इसी आसन से परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बात को बोल रहे हैं। महाराज बोल रहे थे कि शब्द थोड़ा अजीब सा है, महाराज बोल रहे थे, एग्जैक्ट महाराज की बात बोलूंगा कि कुतिया भी अपने बच्चे को अपने मुख से चावल ला ला करके पाल देती है, बंदरिया भी पाल लेती, देखते नहीं यहां पे। तो क्या इसी प्रकार बच्चों को पालना चाहिए, अगर खेल खिलाया है पिलाया है लेकिन यह शिक्षा नहीं दी है कि वो मुक्त कैसे हो, तो इस कुटुंब भरण का क्या फायदा। इसीलिए कह रहे हैं व्यर्थ है। ध्यान दीजिएगा कि बच्चों को पालने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। डज दैट मेक सेंस टू यू, क्योंकि फिर गीता से आप समझेंगे छठे अध्याय से, जो योगी असफल हुआ वो ब्रह्मचारी के पैदा नहीं हो सकता है, वो योगियों का ही पैदा होगा। और प्रभुपाद जी भी बोलते थे कि जितने छोटे बच्चे इस कौन में हैं ये सब वैकुंठ चिल्ड्रन है, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, वो कृष्ण भावना में आगे प्रगति कर रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा मृदंग कैसे बजा सकते हैं। आपने कल ही देखा ना, कल दामोदर भक्ति धीर दामोदर महाराज कीर्तन कर रहे थे, चैतन्य नाम का बच्चा मृदंग पूरा बजा लिया उसने, पूरा बजा लिया मंगल आरती के लिए। नाइसली छोटे बच्चे के हिसाब से बहुत अच्छा बजा रहा है। वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेटेड। पहली बात तो उठ करके आना बहुत मुश्किल है, उतनी उम्र में कोई 4 बजे स्नान करके आ, और एक दिन नहीं बारंबार आता है, डेली आता है, ये कोई आसान बात है। ठीक है, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। यह श्लोक का आशय नहीं है कि कुटुंब का भरण ना किया जाए, कि ये बोला जा रहा है श्लोक में, ये नहीं बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि बस केवल कुटुंब का भरण करने में लगा हुआ है, वो भगवान के बारे में चर्चा कथा यह सब जीरो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं आकर बात समझ में आ रही, प्रथम स्कंद आपने सुना ना, परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में वर्णन है, बच्चे के जन्म के बारे में इतना श्लोक क्यों बोले जा रहे हैं, क्या उत्तर है? क्योंकि वो महाभागवत हैं, वो भक्त हैं, एक सेंस ठीक है। वैसे देखिए अगर कोई रियली कृष्ण भावना भावित संतानों को उत्पन्न करना चाहता है तो उनकी शुरुआत तो गर्भाधान संस्कार के समय से शुरू हो रही है, मां भी भक्त हो पिता भी भक्त हो, इस प्रकार से वह काफी संभावना है कि जो संतान है वह भी भक्त बन जाए। और मान लो संतान न भक्त थी या इस प्रकार का नहीं भी था, फिर भी प्रसाद खिलाकर भक्ति का प्रवेश दे करके वह भक्त बन सकते हैं। श्रीधरी, उन गृह कार्यों में व्यर्थ आयु बीत जाती है, इस बात को सुखदेव जी कहते हैं। किन गृह कार्यों में? गृहेषु गृह मेधिनाम अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृह मेधिनाम। उनका आत्म तत्व को ना समझ करके घर गृहस्थी में ही मन लगा रहता है, तो कोई कहे कि समय क्या दिक्कत क्या, तो कहते हैं उसमें आयु व्यर्थ बीत जाती है। बहुत सुंदर बात, मैं भूल ही गया बताना, बहुत सुंदर बात, क्षमा कीजिए इसके लिए, बहुत अच्छी बात। महाराज कहते हैं व्यर्थ बोल रहे थे, सफल और निष्फल कह रहे थे कि देखो ये रात्रि में आयु खत्म होने की बात कहते हैं, देखिए रात्रि आपकी आयु को नष्ट कर रही है, लेकिन अगर 10-5 मिनट भी आपने जप कर लिया तो पूरी रात्रि सफल है, या भागवत पढ़ ली। अब इसका अर्थ क्या है, देखिए एक पेड़ है और उस पेड़ में अगर दो फल भी आ गए तो आप ये मानेंगे कि वह पेड़ फल सफल है? यस, आप ये नहीं कह सकते कि फल नहीं आया। इसको आप 2.3.17 में भी देखेंगे। तो एक भी दिन हमारा बीतना नहीं चाहिए जिसमें भगवान विष्णु का या तो कीर्तन ना हो या श्रवण ना हो या कुछ भगवान का पूजन, कुछ ना कुछ विष्णु कृत्य रोज होना चाहिए, तब हमारी निद्रा या हमारे आयु व्यर्थ नहीं जाएगी। Does that make sense? इस पे महाप्रभु ने कहा एक भक्त ने कि महाप्रभु अगर किसी ने एक क्षण के लिए भी कृष्ण का स्मरण किया है तो उसका बहुत बड़ा लाभ है। महाप्रभु ने कहा हां, लेकिन अगर उसने एक क्षण के लिए कृष्ण का विस्मरण किया है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान है। आई थिंक इन दैट डायरेक्शन, बट एटलीस्ट कुछ तो लाभ प्राप्त करें। तो इसलिए केवल इन ग्रह कार्यों में व्यर्थ ही अपनी आयु को नहीं बिताना चाहिए, तो इसलिए विपर्य को बात यहां पर बताई जा रही है। गृहस्थ मनुष्य रात्रि में अपनी आयु को या तो सोने में बिता देता है अथवा स्त्री के साथ संगम करने में बिता देता है। दिन में वह अपनी आयु को धन कमाने की इच्छा से उद्योग करता हुआ बिता देता है। क्या आप लोगों ने कभी इस प्रकार से देखा है कि लोग बहुत प्रचुर मात्रा में कर्म करने के लिए उद्यत हैं, बहुत ज्यादा? और अगर आपने नहीं देखा है तो पैसे खर्च करके अजमेरी गेट का, हम मायापुर की ट्रिप तो नहीं करा सके लेकिन अजमेरी गेट की ट्रिप जरूर कराने की इच्छा है। आप लोग कर लीजिएगा, मैं अपने यहां से, इज इट नॉट, चाहे यहां तो चलिए सब राधे राधे हरे कृष्ण करते हैं, लेकिन आप जाइए अजमेरी गेट में, हाँ दिल्ली जाइएगा, मतलब देखा ही होगा आपने, मेरी बात समझ, कुछ समझ पा रहे हैं? बॉम्बे तो जाए, बॉम्बे का तो घर कहना ही, आप रह चुके ना बॉम्बे में, दिख रहा है ना सब अंधे गाड़ी चला रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल अंधे चला रहे हैं सब, अपश्यताम आत्म तत्व, या आईआईटी या कहीं पे भी आप जाइए, भरा हुआ है जगत अब इन ऐसे लोगों से, बहुत उद्यम कर रहे हैं, बहुत उद्यम कर रहे हैं, बल्कि कहा जाए बहुत उद्यम कर रहे हैं उनको लग रहा है हम बहुत उद्यम कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, और अभी भी ना समझ पाए तो उनको मार दीजिए एक सेकंड के। मान लो जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं बहुत मेहनत कर रहा है, उसका फास्ट फॉरवर्ड करके वहां पहुंचे जब वो मरने वाला है, तब वहां से पीछे से देखिए कि जो इतना उसने प्रयास किया उसका क्या वैल्यू है, इसलिए कह रहे व्यर्थ बता रहा है। और अगर दूसरों को नहीं देखना चाहते तो अपने को देखना चाहिए कि मान लीजिए हमें कल ही मरना है, तो अब यहां जो हमने बहुत बड़े बड़े कार्य किए उसकी क्या वैल्यू हो गई। यस, आपके बॉस मर चुके हैं, इज इट नॉट, पिछली कंपनी में जो थे, आपके मित्र मर चुके हैं, मित्र मतलब एक साल ही तो बड़ा था ना वो, ऐसे मेरा भी, मुझे याद है कि मेरा एक मित्र, उसका नाम था सलिल, और उसके भाई के संग मैं क्रिकेट खेल के आया था, और पता नहीं एक 6 महीने के बाद ही मालूम चला कि वो मर गया, स्वस्थ था बिल्कुल। ये हम कई बार बोल चुके, हमारे मित्र की पत्नी 3 दिन में मर गई, कितने सपने होंगे ना उसके, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर समथिंग लाइक दैट। अभी हमारे भी एक रशियन भक्त थे, उनकी शादी हुई थी, उसके बाद मैं बता कहा माता जी कहां, कहते हैं गई उन्होंने कहा माता जी कहां गई, दिख नहीं रही, कहते हैं गई, फिनिश्ड। ऐसे मेरे गुरु भाई की शादी हुई थी, वो अपने, मुझे पता नहीं था उनकी बच्ची घूम रही थी, दादी दादी संग, हमने कहा वो आए, हमने कहा क्या हुआ, बाद में मालूम चला कि उनके पति का तो देहांत हो गया। कितने लोग हमारे, जब मैं ज्वाइन किया था श्याम कृष्ण प्रभु थे वहां पे, 35 उस समय शायद 35 साल के होंगे, वो शरीर छूट गया, कुछ समय बाद उनकी पत्नी का भी शरीर छूट गया, हमारे गुरु भाई थे वो। एक भक्त थे जो आयुर्वेद में बहुत एक्सपर्ट थे, कुछ नहीं, ई रिक्शा में मृत्यु हो गई झटका लगा मर गए, बताइए। कुछ समय उनकी पत्नी भी मर गई। अरे ई रिक्शा सबको नहीं मार रहा है, कहने का अर्थ है कि जहां हमारा समय है आने का मर जाएंगे, तो आप पीछे मुड़ के देखिए ना, जो हमने भौतिक किया उसका क्या वैल्यू है। तो कभी भी जो कुछ कार्य करते हैं उधर तोल लिया करिए, इधर ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं और कहां कहां एसएल वर्ल्ड में जा रहे हैं, घूम घूम के कहां पिक्चर देखने जा रहे हैं, उसका इधर से देखिए कि सबका हिसाब बन रहा है। और कि तुमको मान जाओ इसीलिए दिया है, उसका पनिशमेंट मिलता है। जब धन की प्राप्ति हो जाती है तो उससे अपने परिवार के पालन में अपनी आयु को बिताता है। अगर वह परिवार भजन कर रहा होता तब तो अच्छा होता कि नहीं। पत्नी मान लीजिए सुबह उठ के मंगल आरती जा रही हैं, जप कर रही हैं, बच्चे कर रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं तो करने, इनको पालन करने का क्या प्रयोजन। मैं इस बात को फिर से बोल रहा हूं, अगर पत्नी बच्चे ये सब भजन नहीं कर रहे हैं तो इनको पालने का क्या प्रयोजन। अब कठिनाई यह है कि ये बातें बड़ी कड़वी लगेंगी, लेकिन कभी सोचता नहीं है। ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां आपको कुछ ना मिले, तो क्या ऐसी बुद्धिमानी है। और ना मिले चलो, जीरो मिले तो कोई बात नहीं, और नेगेटिव बैलेंस मिले तो, व्हाट डू थिंक अबाउट दैट। अगर लड़का भजन कर रहा है, मान लो 16 माला जब कर रहा है, चार माला कुछ भी कर रहा है, तो उसको प्रसाद खिलाया कुछ खिलाया तो वह पुण्य हुआ कि नहीं। इज इट नॉट, पत्नी ने को के पास लेके आए दाल चावल सब्जी जो भी कुछ लेके आए, और वह फिर उसके बाद आरती में भी मालूम मतलब जी आरती कर रही है, भगवान की सेवा कर रही है, तो उससे पति को फायदा हुआ कि नहीं। जो भजन पत्नी ने किया उसका फायदा उसको मिलेगा। लेकिन अगर पत्नी टीवी देख रही है, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रही है, या यूट्यूब पैंट देख रही है, जो भी जो शर्ट पैंट जो भी है, तो अब पति को क्या लाभ हुआ, उसकी मेहनत तो व्यर्थ गई कि नहीं गई, ये सोचने वाली बात। और अब देखिए, आप लोग कहेंगे सब बातें तो पता है, तो पता है तो सारे लोग कर क्यों नहीं रहे। मैं एक सिंपल बात बता रहा हूं, भैया जी हम भक्ति से बात कर रहे थे, हम थोड़ा सा प्रेम से डांट रहा था, समझा रहा था, कह रहे कि हम नौकरी करते हैं तो वहां वो लोग जो खाते हैं वो हम नहीं खाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। लेकिन आप यह नहीं सोच रहे हैं कि जिसने आपको ये जीव दी है उसको बहुत बुरा लगेगा। भगवान कृष्ण को बहुत बुरा लगता है अगर हम अनअर्पित चीजें खाते हैं, उधर नहीं सोच रहे हैं। जो मेन बॉस है उधर उसको सोच नहीं रहे हैं, और यहां के चिल्लर मिल्लर बॉस के बारे में सोच रहे हैं। इस मनुष्य जीवन की व्यर्थता हुई कि नहीं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब धन की प्राप्ति हो जाती है तो उससे अपने परिवार के पालन में अपनी आयु को बिताता है। ये लाइन समझ में आ रही है, इस कुटुंब भरण में अपनी आयु को व्यर्थ कर रहे हैं। इस पे मैं कहानी सुनाना चाहता हूं। वुड यू लाइक टू हियर अ स्टोरी? यस, एवरीबॉडी लाइक्स टू हियर अ स्टोरी। एक व्यक्ति था, उसकी एक रिकरिंग थी, रिकरिंग समझते हैं, हर महीने इतना पैसा जमा करना चाहिए। तो उसने बड़ी निष्ठा से पूरा जीवन पैसा जमा करता रहा, जमा करता रहा, जमा करता रहा। बूढ़ा हो गया वो, तब उसके मरने का समय आया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पास अब कुछ महीने ही बाकी हैं जीवित रहने के लिए। तो कहा भाई जब मरना ही है तो इधर देखें कितना पैसा इकट्ठा हो गया है। तो गया बैंक वाले के पास, मैनेजर साहब के पास, उन्होंने कहा कि भाई कितना पैसा इकट्ठा हुआ। कहता एक भी नहीं। तो कहता अरे पूरा जीवन हर महीने में पैसा डाला हूं, ये देखिए रिसीट। रिसीट बोलेंगे क्या उसको, बैंक स्टेटमेंट जो भी देखिए। कहते हाँ आपने डाला है लेकिन गलत बैंक अकाउंट में, अपने अकाउंट में सही अकाउंट में तो डाले ही नहीं। तो जो धर्म कर्म पूजा करते हैं, कि कोई भजन कर रहा है उसकी सहायता करते हैं, तो वो शाश्वत रूप से आता है और करोड़ों गुना आता है। मेरे पास जब भी कोई डोनेशन देता है तो मैं उसको तुरंत नहीं खर्च करता, मैं देखता हूं क्या इससे किसी का भजन बढ़ेगा, तो उस जगह उसकी उसमें इन्वेस्ट कर देता हूं। तुम कथा के लिए स्पीकर चाहिए, हाँ ले लो, अच्छा वाला ले लो, हम जानते हैं कि वो भक्त कथा सुनेगा। कथा सुनने का पुण्य कितना होता है तो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जिसने मुझे धन दिया उसका भी लाभ होगा, या गायों की सेवा में जहां एकदम बोने से करोड़ों गुना वापस आता है, लाखों गुना वापस आता है, वहां इन्वेस्ट करना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति करना चाहिए। जैसे भी ये नया स्पीकर आया है तो मथुरेश प्रभु हरिप्रभु को मैं क्यों बोला, अब ये जितनी कथाएं होंगी जब तक हमारा ये स्पीकर चलता रहा, तो उम्मीद है कि ये स्पीकर भी चलता रहेगा, सबका फायदा होगा कि नहीं। यस, अद्भुत बात है कि बात सुनने भी नहीं आए कोई बात नहीं, व्यस्त होंगे किसी कारण से। भगवान के प्रचार में आप कुछ भी सहायता करते हैं, वो सबसे बड़ा फायदा है, धन का सबसे बड़ा लाभ होता है। तो खैर वो बातें आप 2317 में पढ़ लीजिएगा, यहां हम बात कर रहे हैं इस प्रकार से, अगर बच्चे भजन नहीं कर रहे हैं, पत्नी भजन नहीं कर रही है, तो हम धन को व्यर्थ कर रहे हैं। अब जरा देखिए और अर्थ क्या ले रहे हैं, बड़ा सुंदर। घबराइए मत, हम खाली एक ही श्लोक लेंगे आज, बहुत सारी चीजें समझना है इसमें। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च वावयः दिवाचा अर्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। मुझे पता था कि भक्त समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम वापस श्लोक रखे थे। चा का अर्थ क्या है, देखिए श्लोक का दो चकार उन अर्थों को सूचित करता है जिनको यहां पर नहीं कहा गया। मतलब समय व्यर्थ करने के केवल यही तरीके हैं, ऐसा नहीं है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि रात में सोना, स्त्री संग, पैसा कमाना और कुटुंब भरण, इसी में व्यक्ति समय बर्बाद कर रहा है। दारू पीने में नहीं कर रहा है, जुआ खेलने में नहीं कर रहा है, जुआ खेलने में समय व्यर्थ नहीं कर रहा है। ये आपने देखा नहीं, पत्ते खेलने में, जब यहां से भरतपुर जाइए वो गांव वाले रास्ते से एक से एक महात्मा पड़े रहते हैं, ऐसा लगता है कि बस। आपने देखा है कभी, खूब पत्ते खेलते, खाली समय है पूरा। गांव में समय किल करने का यही बहुत अच्छा तरीका है, या ट्रेन में मूंगफली छीलते रहते, तो वो बातें भी आपको चर से ग्रहण करनी होंगी। समझ में आ रहा है? दोस्तों के संग बैठ करके वो क्या कहते हैं उसको, प्रजल्प कर रहा है, तो वह सब भी आपको चा से ग्रहण कर लेना होगा। दो चा की क्या जरूरत है, एक ही चा हो जाता। दिन और रात वाला चा, रात में भी कुछ और अन्य कार्य कर सकते हैं इनके अलावा। भाई मान लो शादी भी नहीं हुई है तो भी व्यक्ति, और सो भी नहीं रहा है तो ऐसे वीडियो गेम खेलने में चा लगा दीजिए। हाँ, यूट्यूब में चा लगा सकते हैं, आईडिया नहीं दे रहे लोग, बोलने से आईडिया आने लगते हैं, लेकिन वीडियो गेम में का भी तो चा में चला जाएगा। मुझे आज भी याद है कर्मी जीवन में, बहुत पहले की बात है, मैं भी 95-96 की बात होगी, उस समय वीडियो गेम बड़े मुश्किल से मिलते थे। 160 रुपये जमा करके हम लोग वीडियो गेम ले आए, मैं, मेरी दीदी और हमारे सब कजिन आए, सब लोग सोचे कि आधा आधा घंटा खेलेंगे, और मैं झकड़ के पूरा टाइम खेलता रहा, और बाद में एकदम सर फटा मेरा, उन्होंने कहा व्हाट इज दिस। उसके बाद जिंदगी में कभी शायद वीडियो गेम, मुझे याद नहीं वीडियो गेम खेला। तो इस तरह से भी समय बर्बाद करते हैं रात्रि के। तो कुछ लोग कहेंगे प्रभु जी आप तो सारा ये भोग लिए और हमको मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये सब व्यर्थ का समय, हमको पहले बता दिया गया तो हम नहीं करते शायद। और दिन में क्रिकेट खेलने में, या वो इस तरह के स्क्वायर बना के क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लंगड़ी टांग, हाँ ऐसे करके कुछ इस प्रकार के कार्यों में खेलते हैं, दिन खराब करते। तो ये सब भी होगा, आप मेरी बात समझ रहे हैं, बच्चे लोग भी तो समय बर्बाद करते हैं अपना। ये तब तो वह पैसा नहीं कमा रहे होते हैं, परिवार का भरण पोषण नहीं कर रहे होते, इसका अर्थ यह नहीं कि अब वो सब लोग आत्म साक्षात्कार में लगे हुए ध्रुव महाराज की तरह। बहुत समय बच्चे लोग बर्बाद करते हैं, तो इसे आपको दो चकार से समझना होगा। देख रहे हैं कि एक श्लोक पे कितना व्याख्या की गई है, ठीक है। सारार्थ दर्शनी, वे अपनी आयु व्यर्थ ही व्यतीत करते हैं। वह कैसे, हमें तो लग रहा है बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं, तो कहते हैं कि उनकी वय अर्थात आयु रात्रि में निद्रा द्वारा चुरा ली जाती है। चुरा ली जाती है बड़ा अच्छा शब्द है, मानो जबरदस्ती छीन ली जाए। जब नींद आती है तब ये नहीं कहते हैं कि अब मे बी आई वुड लाइक टू स्लीप। आपको पता है कि नहीं पता, हमारे ड्राइवर साहब बता रहे थे कि कई बार एयरपोर्ट से शुरू करते हैं और उनको ध्यान पड़ता है, अच्छा हरिओम ढाबा आ गया, मतलब सोते हुए गाड़ी चला रहे हैं। मैं आज तक इस रहस्य को नहीं समझ पाया कि सोते हुए गाड़ी चला करके एक्सीडेंट क्यों नहीं होगा। महाराज पे वार साहब बोल रहे हैं कि भाई आप कहीं जाते हैं तो 1000 रुपए का रूम खरीद लेते हैं, सामान्य बात है, 1000-1200, तो इसीलिए ना कि 1200 रुपए में नींद हमको ठीक से मिल जाए। नींद के लिए नींद ही तो खरीद रहे हैं 1200 रुपए में, 1200 रुपए में नींद खरीदेंगे और टमाटर वाले से 2 रुपए में झगड़ेंगे, करते कि नहीं, करते कि नहीं। भारत में अद्भुत है लोग, ये रिक्शे वाले को 10 रुपए के लिए से खून चूस लेंगे, और ये होटल वाला आपसे 1200 रुपए लेगा, 2000 लेगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, नींद आ जाए ठीक से। चुरा ली जाती, क्योंकि रात्रि कर्म के लिए अनुपयुक्त होती है, मतलब रात्रि में कोई कार्य कर नहीं सकता, सोता है व्यक्ति, अथवा काम रमण आदि से भी उनकी आयु कम हो जाती है, चूंकि कर्मियों के लिए स्त्री संग अनिषिद्ध नहीं है। देखिए शब्द बड़ा सुंदर किया जा रहा है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि गोली मार देंगे तुमको अगर तुम स्त्री संग नहीं करोगे। इज नॉट डिस अलाउड फॉर देम। बाप रे, इसको समझने का प्रयास कीजिए। लोग आजकल यह सोचते हैं कि हमारी धर्म पत्नी है तो हमारा धर्म है इसको भोगना, लीगल है। और प्रभा जी बोलते हैं लीगल हो चाहे इलीगल हो, ये चित्त को दूषित करने वाला ही है। श्रीमान रमाकांत रूप बड़ी बहुत बहुत अच्छी इंसाइट बता रहे थे कि वानप्रस्थ में इतना तप क्यों करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि भोग का संस्कार चित्त पे बहुत ज्यादा है। इस कारण से उसके मार्जन के लिए बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति वानप्रस्थ में बहुत तपस्या करे। डज दैट मेक सेंस? यहां क्या लग रहे हैं, स्त्री संग अनिषिद्ध नहीं है। और देखिए पहले जमाने में तो शास्त्र के अनुसार केवल संतान उत्पत्ति के लिए संग करता था, वह भी भोग में रखा गया है, उसका भी संस्कार मन में आता है। और अब यहां तो संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं कहते हैं कि हम स्त्री संग नहीं करना चाहते। ये सब हिसाब प्रभात कई बात पर इस प्रकार से बोल रहे हैं, संतान का दायित्व नहीं लेना चाहते हैं लेकिन भोग का दायित्व ले लिए हैं। जैसे लग रहा है कि भाई वो भोग नहीं करेंगे तो जो महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे, महाराज से पूछा कि महाराज अगर लोग शादी नहीं करेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से, तो महाराज तो जानते हैं उत्तर देने में एक्सपर्ट हैं, तो बोले कि भाई यहां जितने गृहस्थ बैठे हैं इनमें से कितने लोग सृष्टि चलाने के लिए शादी किए थे कि भाई शादी नहीं करेंगे तो सृष्टि नहीं चलेगी। अरे क्या उत्तर है कि नहीं, और एक भी व्यक्ति हाथ हाथ नहीं खड़ा किया। वी टेंड टू फॉरगेट हाउ व्हाट अमेजिंग गिफ्ट इज दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। देखिए एटलीस्ट कम से कम सुनना तो चाहिए, पालन करो या ना करो, सुनना तो चाहिए कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मानव जीवन कितनी स्पीड से भगवान के पास जाने वाली साधन है। और उसको अगर समान और समान शब्द में कहें, तुच्छे भोगों में व्यक्ति व्यतीत करके सोच रहा है कि बड़ा सुख प्राप्त हो गया। ये आगे और आएगा भी। तथा दिन में आयु अर्थ हया अर्थात इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को संचित करने की स्पृहा से घट जाती है, क्योंकि अर्थों के बिना व्यक्ति न तो कर्म की सिद्धि कर सकता है और न ही अपने परिजनों का भरण कर सकता है। क्योंकि कर्मयोग में व्यक्ति द्वारा अपने कुटुंब भरणे न अर्थात कुटुंब का भरण पोषण करना उपदिष्ट है, च अर्थात कर्म सिद्धि। देखिए समझने का प्रयास कीजिए क्या है, ये थोड़ा अद्भुत तरह से बोल रहे हैं। अर्थ यह अर्थ है मतलब भोग की वस्तुओं को घटित कर रहा है, खींच। देखिए धन क्यों चाहता है व्यक्ति, क्या धन केवल इकट्ठा करने के लिए चाहता है? आप भी जानते हो, ये सब लोगों ने देखा हुआ है, सभी लोग जिंदा थे ना जब ये नोटबंदी हुई थी, ठीक है। आप जानते हो कि जितने मात्रा में नोट लोगों ने बाहर भगा दिए फेंक दिए उससे आधी मात्रा के लिए भी वो अपनी जान दे देते। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन क्यों दे देते? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति बहुत पसंद है और वह धन इंद्रिय तृप्ति के द्वारा इंद्रिय तृप्ति को लाने वाला है। जब उसका प्रयोजन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं रहा तो कागज का नोट बन गया एक ही रात्रि में। सोचे आप कभी कि उसके पीछे वो लोग कितना कर्म किए, कितने लोगों की हाय ली है? क्या पैसा ऐसे आ जाता है? ध्यान दीजिएगा, वो पैसा फेंक दिए, सुनाई पड़ रहा मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन कर्म को नहीं फेंक पाएंगे, वो बंधन लगेगा ही। तो इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को संचित करने की स्पृहा से घट जाती है। भगवान का भजन करने की इच्छा कहां आती है उसमें? मन तो भोगों में ही लगा रहेगा, हाय ये प्राप्त नहीं हुआ, है वो प्राप्त नहीं हुआ। हमको ये बातें काउंसलिंग में दम कान से बोली सुनाई दी जाती अच्छी तरह से। एक भक्त बहुत टेंशन में थे ना, क्यों भाई कि हमारे पति को बहुत टेंशन है, क्यों टेंशन है, कृष्णा नहीं है उनके पास। मैंने कहा ये तो मेरे पास भी नहीं है। उनको टेंशन है, वो पुरुष हैं, हम भी पुरुष हैं, हमें तो कोई टेंशन नहीं कि कृष्णा नहीं है। कृष्णा है, कृष्णा के तो कृष्णा तो फ्री के हैं, क्या करना है। कृष्णा नहीं है तो आप में से किसी को टेंशन है कृष्णा नहीं है? तो ये बताइए कठिनाई है कि नहीं, खुद एक खुद के घर में रह रहे हैं फिर 25,000 रुपए की क्या कहते हैं उसको किस्त ले रहे थे कि दूसरा घर भी ले लें, क्या एक्सपेंड करेंगे भगवान की तरह अपने आप को? भगवान ने बहुत सारे महल बनाए तो समय रह रहे ना, ये मैंने आंखों से देखा है। हमारे भक्त घर में हम गए थे दिल्ली में, पार्थ प्रभा भी थे ना, 1, 2, 3, 4 माले बना दिए, उसके बगल में एक्स्ट्रा पैसा 1, 2, 3, 4 जहां कोई रह ही नहीं रहा है, न किराए पर उठा रहे, कई सब फ्री में बन रहा है, और मरणासन है पिताजी, प्रैक्टिकली मरणासन है, और उनको बोल रहे भजन कर लो भजन कर लो। अरे ये 5 AC का पैसा कौन देगा, क्या क्या बहाने, बेसिकली भगवत विमुखता को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात आप मेरी बात समझ गए, भगवान का भजन नहीं करना है तो उसको लीपा पोती करने के लिए लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं, हमको ये करना है, हमें वो करना है, इत्यादि इत्यादि। ये आप देखेंगे कि जो व्यक्ति नाम जप करता है, स्पेशली 16 माला अगर कोई व्यक्ति सुबह करने का नियम पकड़ ले, उसकी बुद्धि भगवान शुद्ध कर देंगे कि हम जो वस्तुएं मेरे आसपास इकट्ठी की गई हैं उनका मैं प्रयोग ही नहीं कर रहा हूं। क्या आप में से ये अनुभव किसी को हुआ है कि आप अपने रूम में कोई वस्तु देख रहे हैं कि 6 महीना हो गया इस वस्तु का मुझे कोई उपयोग नहीं है, किसी तरह आ गई इसको बाहर करो। इफ यू हैव दैट टेम्परमेंट दैट इज वेरी गुड, ये वैराग्य का लक्षण है। नहीं तो लोग बस खाली घट समझ ना इकट्ठा ये भी ये चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे करेंगे भर बढ़ते जाते हैं। यहां तक कि एक भक्त मुझे बताए भी कि 15 से 20 दिन वो काम किए, कुछ 15-20 हजार रुपए की नौकरी रही होगी, उसको छोड़ने में कठिनाई हो रही थी, छोड़ दिए अंतर्गतवा। और ये मैं अपना अनुभव बता चुका हूं कि मैं जब जॉब छोड़ के मतलब आ रहा था, जॉब छोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, 3,000 रुपए के जो बर्तन खरीदे थे उसमें उसको लेके चले, उन्होंने कहा क्या करेंगे उसका। इस प्रकार की आसक्ति हो जाती है, घट जाती है वस्तुओं को संचय करने की स्पृहा से घट जाती है, ये सामान ले आओ वो ले आओ इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो भाई नहीं लाएगा तो कैसे परिवार का नियोजन होगा, नियोजन बोलते ना परिवार का नियोजन पालन सॉरी पालन नहीं होगा, हाँ नियोजन पालन पालन होगा इत्यादि। तात्पर्य हम एक श्लोक लेके ही रुकेंगे, अगला श्लोक कर लेंगे। वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने और दिन में धन कमाने और उसे परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। आप देखेंगे कि जो मैंने प्रश्न किया था वो इसकी आधार पर किया था, याद आ रहा है आप लोगों को प्रश्न कि बच्चों को क्यों पालें, क्योंकि बच्चे पलने चाहिए बस। और मैं फिर उदाहरण दे रहा हूं, मैंने जब ये देखा हमारे रिश्तेदार की मेरी बहन की बेटी ये रट रही थी कि एमएस वर्ड में राइट जस्टिफिकेशन क्या होता है, राइट अलाइनमेंट सॉरी, हमको बहुत लिटरली बहुत दुख हो रहा था। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो, जो एमएस वर्ड चलाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये मगने का क्या फायदा, आप लोग भी चलाते हैं मगे आप मगना याद किए कि भाई इसमें राइट अलाइनमेंट क्या होता है। और मान लीजिए उस बच्चे ने 99 के 100% नंबर भी आ गए, इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मैं एक नया सिलेबस तैयार करूं जिसमें बोले कि भाई झाड़ू इसको कहते हैं और पोछा इसको कहते हैं, और उसमें अगर आपके 100% नंबर आ भी गए तो उससे हो क्या जाएगा, समझ रहे ना मेरी बात, कितना टाइम वेस्ट है। आप में से अगर अभी भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो तो अगर ये चॉइस दी जाए कि वापस आप 5 साल के हो जाए फिर नर्सरी में जाना पड़े तो नहीं, बिल्कुल यस सिर जब कीजिए, कितना वेस्ट है ना। यह अगर कहा जाए कि दोबारा पैदा हो और मतलब पुरुष शरीर मिले और ब्रह्मचारी आश्रम में, मतलब समझ रहे जो ट्रेडिशनल ब्रह्मचारी आश्रम में है वहां जानने को मिले, भक्ति के संस्कार प्राप्त हो तो फिर भी व्यक्ति स्वीकार कर लेगा, लेकिन ये कचरा पड़ने के लिए कौन जन्म लेगा, है ना। इस तरह की मानव सभ्यता भागवत विचार द्वारा धारा द्वारा निंदित है। बहुत सुंदर बात महाराज बता रहे थे इसमें, कह रही देखिए श्रीमद् भागवतम जीवों के संग बिल्कुल धोखा नहीं करती, जो भी कैटव धर्म है उसको बाहर निकाल दिया गया है। गृहस्थ आश्रम की इस प्रकार की निंदा अन्य शास्त्रों में नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए जीव गृहस्थी नहीं है, डज दैट मेक सेंस, जीव गृहस्थी नहीं है, आत्मा कोई गृहस्थ नहीं है, वो तो अब संस्कार ऐसे हैं तो उसको कुछ भोग का संस्कार उसको एडजस्ट करने के लिए ठीक है भाई इसमें प्रवेश कर जाइए, लेकिन आत्मा गृहस्थ नहीं है, सब लोग बोलिए यस, हाँ गुड, व्हेन योर ओपिनियन इज नीडेड विल बी गिवन टू यू, ओके। आत्मा गृहस्थ नहीं है, ना तो आत्मा स्त्री है ना आत्मा पुरुष है, ये अब हम लोग उससे क्या कहते हैं उसको, बद्ध है, ऐसा सोचने से बद्ध है, तो इस बद्धावस्था में भी चलते चलते व्यक्ति को बोला जाता है कि भाई तुम स्त्री हो तुम्हें ये कार्य करना चाहिए, पुरुष हो तो ऐसे कार्य करना चाहिए, नहीं तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा मैं करूं क्या, आत्मा के रूप में क्या करूं। लेकिन आत्मा के रूप में क्या करना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि, तो इस फ्रेमवर्क में रह करके व्यक्ति कार्य करता रहे। बहुत अच्छा उदाहरण हल्दर महाराज दिया करते हैं कि भाई देखो ये छत डलनी है तो उससे पहले क्या पड़ता है, वो शटरिंग बोलते ना, क्या बोलता है, नीचे से वो पोल लगा देंगे और शटरिंग लगा देंगे, तो जिंदगी भर पोल और शटरिंग में नहीं लगाना होता है, वो ढल गई छत हटा दी जाती है। तो वर्णाश्रम में ही हमको चिपके नहीं रहना है, मूल बात है कि हमें उस फ्रेमवर्क में रहते हुए सपोर्ट सिस्टम है भगवान की भक्ति करना है। तो इस प्रकार की मानव सभ्यता इसमें केवल भोग ही भोग पड़ा हुआ ये निंदित है भागवत विचारधारा के द्वारा। काफी इंटरेस्टिंग है विचारधारा, विचारों की स्ट्रीम, श्रीमद भागवतम की विचारधारा इस तरह से भोग की ओर कभी आपको प्रेरित नहीं करेगी और बहुत बहुत ही कम लोगों को स्वीकारनीय होगी। आप लोगों से कितने लोग का अनुभव है कि कभी किसी कर्मी के घर में, कर्मी मतलब जो भोग में पड़े हुए हैं रस्ते में, उसके घर में जाना ही एलर्जी लगती है कि नहीं, महसूस किया ये बात? यस, आप लोग खुद का घर तो नहीं नहीं, और ये अनुभव है कि किसी भक्त के घर में भक्ति अच्छे से कर रहे हो, ऑल्टर हो, जप करते हो, आरती वगैरह होती, तो उसके घर में जाते ही आपको लगता है कि एक आध्यात्मिक वातावरण है, इज इट नॉट गुड। हम लोग हमारे क्या नाम है प्रभु जी का, संतुष्ट कृष्ण प्रभु के घर में गए तो कुछ भक्तों ने पूछा ये सेंटर है क्या, इस कौन का सेंटर है क्या, इतना सुंदर ऑल्टर और सब कुछ था, तो वो लोग भ्रमित हो गए कुछ समय के लिए भक्त लोग, ये इस कौन का सेंटर है, मतलब कोई मंदिर वंदिर है क्या। इस प्रकार से आप लोग देखे, सब लोग घर में गए उनके ना, कितना सुंदर तरह से उन्हें बना रखा है। तो ऐसे सभी घर, आप लोगों का घर भी काफी अच्छा था जो हम लोग लास्ट टाइम गए थे, अच्छा है। हमारे सर के घर पे आईआईटी में जो हम जिसमें हम लोग सीखे थे भक्ति, मेरे मामा जी और उनके बच्चे आए, बोले हम यहाँ बैठे कहाँ, क्योंकि वहां तो जमीन पे ही बैठना होता था, कोई चेयर ना सोफा ना, कहते मैं बैठू कहाँ, दे वर कन्फ्यूज। हम बड़ा अच्छा लगता था, पूरा एक रूम हॉल जो है वो भगवान के लिए था, ऐसे शाम को प्रवचन होता था, कीर्तन होता था। मुझे तो 2-3 महीने के बाद मालूम चला कि ऊपर भी रहते हैं सर और माता जी, ऊपर रहा करते थे, और वहां भी उनके पास बेड भी नहीं था जो हम देखे, जाड़े के लिए गद्दा और जमीन गर्मी के लिए चटाई पे सो रहे थे। और थे क्या असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उस जमाने की बात कर रहा हूं 2003-04 की। This is amazing. जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर, अभी तो शायद IIT के डायरेक्टर बन गए, शायद अभी भी ऐसे ही रहते होंगे। This is amazing, नहीं? बच्चे होने के बाद भी, जो उनकी पहली बच्ची हुई थी यमुना में जाते, तब भी वो चटाई पे सोते थे। It's amazing. तो ऐसे भक्तों को हम आंखों से देखे हैं कि हाँ भाई भोग परिहार करके बस हम नाम, हमको बड़े अच्छा लगता है इस प्रकार के भक्तों का भी गुणगान करने का। They are not materialist. और रोज मंगल आरती होती, जब करते इस प्रोग्राम को सर भागवतम क्लास देते, हम वो देते थे, हम लोग रोज, मैं नहीं रोज आता था, लेकिन एक अलग बात थी, हमको समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन ये अनुभव था कि गीता क्लास सुनने के बाद पढ़ाई नहीं होती थी, ये तो देखा था कि पढ़ाई नहीं हो पाती। आप लोग भी वैसा अनुभव सद अनुभव हो रहा होगा कि पढ़ाई नहीं हो पाती। हाँ, चूंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मेल है, अतः वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित रहती है। ये थोड़ा समझिए, बहुत अच्छी लाइन है। आत्मा कैसी है? सच्चिदानंद। पदार्थ कैसा है? अचेद असत निरानंद। तो उन दोनों का मेल किया है, किया गया है अविद्या शक्ति के द्वारा, अन्यथा मेल होना संभव नहीं है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं वैदिक किधर लेके जा रही है, आत्मा को इससे पृथक करो, इसकी आसक्ति से मुक्त करो और भगवान के पास भेज दो। ये है वेद का उद्देश्य, सिंपल। सब समझ रहे हैं इस बात को? तो ऐसे कार्य जो अभी इनका वर्णन हुआ, रात में सोना, स्त्री संग आदि, यह आत्मा को और इस बंधन में फंसाता है। तो इसलिए कह रहे हैं ये अब अनर्थकारी, इसके लिए भागवत प्रेरित नहीं करती। इससे संबंधित ज्ञान, बात मन में आ रही, बोल दे आप देखो कि कोई लड़का या कोई लड़की शादी जब तक नहीं होता तो अकेले भी रूम पे सोते हैं, है कि नहीं? सभी लोग सोई रहे कि नहीं? शादी के बाद बड़ी अजीब सी बात हो जाती है, आप उसके आगे समझ ही सकते हैं। व्हाट अ अमेजिंग कंडीशनिंग, एज इफ कि बस इसी के लिए हमारी जिंदगी बनी है, देख रहे हैं। और बिल्कुल भूलते जाता है व्यक्ति कि मैं किस लिए हूं, हो सकता हो कल वो व्यक्ति गायब हो जाए। इट्स अमेजिंग हाउ वी बिकम कंडीशनड अनोइंगली फॉर थिंग्स विच वर नेवर नीडेड बाय अस फॉर अ मेजोरिटी ऑफ अवर लाइफ। मान लीजिए 25 साल तक किसी की शादी नहीं होती है तो 25 साल तक प्राय सब लोग अकेले सोते हैं कि नहीं, मतलब छोटे बचपन को छोड़ दीजिए, और उसके बाद इतनी आसक्ति हो जाती है कि बस डबल बेड ही चाहिए। This is very abominable. हम अब बता रहे हैं भक्त का नाम जो उनकी शादी हुई, ब्रह्मचारी, बहुत अच्छे ब्रह्मचारी शादी थी, वो अलग सोते हैं और माता जी अलग सोती हैं। Now this may all seem very, how to say, revolting to conditioned souls. वैसे आजकल भी होने लग गया है, लोग पत्नी काम कर रही है अहमदाबाद में, पति काम कर रहा है बॉम्बे में, मेरा एक मित्र से बता रहा था, तो इसी प्रकार से वैराग्य का अनुशीलन कर रहे हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द अदर वे अराउंड इज देयर। और इसी कारण से भोग को केंद्र में रखा गया, कोई भी संबंध टूटेगा ही। आप पढ़ लीजिएगा भागवत गीता में स्पष्ट रूप से रजोगुण के सुख के बारे में, ये दिन जिंदगी में देख लीजिएगा कि जिस संबंध में हमने भोग को केंद्र में रखा वह संबंध खट्टा ही हुआ, और जिस संबंध में हमने देखा कि हम सामने वाले को कैसे कृष्ण के और पास लेके आते हैं वह संबंध और बढ़ जाता है और अच्छा हो जाता है। डज दैट मेक सेंस? अब पता नहीं, हम लोग रोज कीर्तन करते हैं, कभी हमें सोच रहा था कि काश मुझे प्रेम मिल जाए और आप सब लोगों को, तो कितना आनंद आएगा कीर्तन में। अभी तो हम लोग अनर्थ निवृत्ति में जूझ रहे हैं, अरे निष्ठा तक पहुंच गई, रुचि आसक्ति में पहुंच गए, तो घड़ी कौन देख रहा है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं रात भर कीर्तन हो रहा है, रात भर कथा हो रही है, हाउ मच दे आर रिलिशिंग। महाप्रभु बोले, एक महाप्रभु महाराज कथा कर रहे थे, महाप्रभु बोले तुम लोग रात्रि में सोने में टाइम क्यों बर्बाद करते हो, निद्रा ही रहते, हरि हरि बोल हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए। तो सभी भक्तों ने बोला हरि बोल, जैसे कि यहां पर बोला महाराज ने कहा यही बात महाप्रभु आपसे बोलते तो आप हरी बोल नहीं बोलते, नहीं हमको सुना है। और शिवराम महाराज बोल रहे थे इसी पे, कह रहे थे महाप्रभु की लीला में संलग्न होने के लिए आपको दिव्य शरीर चाहिए, दिन में कीर्तन और शाम को कथा, उसका दिन में फिर कीर्तन उसका शाम को फिर कथा, सोने का अवकाश ही नहीं है। इस प्रकार से खैर हम बात समझ रहे हैं, क्या कह रहा था कि ऐसे कार्य को हमको नहीं करना चाहिए जिससे हम ये शरीर ही भावना हमारी बढ़ जाए। ये इस प्रकार से वैदिक ज्ञान हमको प्रेरित करता है। फिर प्रश्न होगा तो फिर क्यों वेद में इस प्रकार से लिमिटेड सेल्स ग्रेटिफिकेशन के लिए बोल रहा है, क्योंकि वो करेगा ही, इसलिए उसके चित्त को देख करके बोला जा रहा है कि वो भोग करेगा ही, तो इसलिए ठीक कुछ नियम ला करके ठीक है गृहस्थ आश्रम में जा सकते हो, लेकिन उसमें नियम बहुत सारे। महाराज बता रहे थे ना अभी क्लास में, सुना था कि नहीं सुबह, कि भाई भोग करने का इंद्र तृप्ति की छूट है, अनिषिद्ध नहीं है गृहस्थी में, लेकिन उसका पेमेंट बहुत बड़ा है। अगर आप इसको हम थोड़ा और इलेबोरेट करें कि मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और कोई आइटम है, लेकिन उसके ऊपर आप वो देख लें कि भैया 1500 रुपए की एक कटोरी है, तो कहेंगे ठीक है हम इडली सांभर खा लेते क्यों है कि नहीं करते कि नहीं, कितना सुंदर उदाहरण निकल रहा है कि नहीं। इधर सब दृष्ट है कि रेस्टोरेंट में जा रहे हैं कि आइटम बहुत आपको लग रहा है कि बड़ा अच्छा है, लेकिन उसका पेमेंट देख रहे हैं कि बहुत बड़ा है, तो छोड़ देता है बहुत महंगा आइटम है, लेकिन यहाँ कितना बड़ा पेमेंट है। हम अपने बात अपने पिताजी को देख रहे हैं, मैं पिताजी के जीवन देख रहा हूं, पूरा जीवन उनका चला गया मुझको पालने में या मेरी बहन को पालने में, एटलीस्ट मैं तो देख पा रहा हूं। ऐसे मेरे बाबा जी को भी चला गया, ये सब हम अगले श्लोक में देखेंगे, लेकिन मुझे तो दिख रहा है किस प्रकार से पूरा मेहनत कर रहे हैं, ठंडे पानी में खड़े होकर काम कर रहे हैं, बारिश में देख रहे हैं, तो कभी नहीं करना चाहिए ऐसे। करना चाहिए मतलब लोग करते ही हैं, आसक्ति की वजह से करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। हमारी माँ जो है बुखार में भी जा रही है नौकरी करने के लिए तैयारी थी, सभी लोग, कोई एक बात नहीं बोल रहा हूँ, सभी लोग करते हैं, आंसुओं से पाले जाते हैं बच्चे, है कि नहीं? और वो आंसू और निकलवा देते हैं उसके बाद भी आंसू निकलवा देते हैं। मैं इस पर एक और बात बोलना चाहूंगा, व्यर्थ क्यों है जरा सोच लीजिए। एक कथा है कि एक व्यक्ति ने कुछ बोला भीम को संबंध में कि देखो एक कुआं है और उससे एक बाल्टी है और उस बाल्टी से पानी निकालते हैं और पांच बाल्टी में पानी भर देते हैं, लेकिन वो पांच बाल्टियां मिलकर एक बाल्टी को नहीं भर पाती। इसका क्या मतलब है? तो भीम जाकर युधिष्ठिर महाराज को बोले, और भी बात इसने कहानी सुनाई थी, एक बाले ये बात बोले तो युधिष्ठिर महाराज कहते पकड़ो उसको, वो कली पुरुष है। समझ गए? एक पिता पांच बच्चों को पाल देगा लेकिन पांच बच्चे मिलकर भी एक पिता को नहीं पाल पाते, ये कलयुग का लक्षण। तो उस दृष्टि से देखें तो भी तो जीवन व्यर्थ हुआ। जैसे फिर देखिए मैंने वो कथा बताई आपको, सच्ची घटना कि माँ और पिता को वो छोड़ करके घर जा रहे हैं अब बुढ़ापे में मरने के लिए। अब सीन चेंज कर दीजिए, मान लीजिए उस प्रभु जी ने शादी नहीं की होती और भजन किया होता, तब भी वो शायद स्थिति में रहता कि बुढ़ापे में कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन जवानी तो सफल हो गई। क्या गारंटी है कि बच्चे ध्यान ही रखेंगे? तो ये बात श्रीमद् भागवतम की बड़ी ही वैराग्य और ज्ञान को ही प्रोषित करने वाली है। इसको इन लोगों के विम्स हैं, विम्स को संतुष्ट करने के लिए शास्त्र नहीं है। विम्स मतलब उनको क्या अच्छा लगता है यह बोलने, उनको क्या अच्छा लगता है उस पर नहीं बोल रहे हैं, क्या उनके लिए अच्छा है वह सर्व कर रहे हैं। भागवतम भागवतम इज नॉट चीटिंग अस। इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। किससे संबंधित ज्ञान? आत्मा को कैसे इस भौतिक संदूषण से मुक्त किया जाए। जो लोग अत्यधिक भौतिकतावादी हैं वे इस ज्ञान से अनजान रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। ऐसे भौतिकतावादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नियमित आर्थिक विकास या यौनाचार के लिए स्त्री संगति की छूट रहती है। जो लोग कर्मियों से ऊपर हैं यथा ज्ञानी योगी तथा भक्त, उन्हें यौनाचार सर्वथा वर्जित है। मतलब जितना कम उतना अच्छा। इस पे भी एक बात याद आ रही, एक बार सोक्रेटस को बोला गया कितना स्त्री संग करना चाहिए, कहते जीवन में एक बार। तो व्यक्ति भी निर्लजता, उसने कहा उससे संतुष्टि ना हो तो कहते हैं साल में एक बार, तो कहते उससे भी संतुष्टि ना हो तो कहते हैं महीने में एक बार, कहते उससे भी संतुष्टि ना हो तो कह रहे हैं कि ऐसा करिए कब्र खुदवा लीजिए और जो करना है करिए। समझ गए इसका मतलब? सब लोग समझ गए? हाँ, आयु क्षीण हो जा रही है इसमें, दोनों पक्षों की, स्त्री की भी और पुरुष की भी, सब आयु घट रही है और उससे कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो आगे आप पांचवें स्कंद में सुनने वाले, ये सब सुख तो सुअर को भी प्राप्त होता है, सुअर को भी उतना ही प्राप्त होता है जितना मनुष्य को प्राप्त है, लेकिन लगा पड़ा है व्यक्ति इसमें। ये बात और भी समझ लीजिए, प्रभुपाद जी का प्रसिद्ध स्टेटमेंट हम सुन चुके हैं इस संबंध में, 6.13 के तात्पर्य में लेक्चर में प्रभुपाद जी गीता पे बोल रहे हैं कि ब्रह्मचारी व्रतस्थतः। तो जब बहुत व्यक्ति अत्यधिक भोगों में पड़ता है तो उसका यह दृढ़ संकल्प नहीं रह पाता कि मुझे भजन करना है। जस्ट मतलब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भोगों में बहुत प्रवृत्त है, स्पेशली इस प्रकार का भोग, तो उसमें व्यक्ति की उसकी कैन हैव यू एवर फेल्ट एक उत्साह रहता है कि मैं जप करूंगा या मैं करूंगी या भगवान की प्राप्ति करूंगा। एक आप ऐसे कूदते नहीं है लेकिन एक मन में भाव रहता है कि मैं प्राप्ति करूंगा। और कुछ लोग ऐसे ढीले से पड़े रहते हैं मानसिक रूप से, नहीं हम क्या जप कर सकते हैं क्या। मैं भक्त को पूछ भी रहा था, भाई क्या हो गया, 16 माला सुबह नहीं कर सकते हैं? नहीं वो शाम को फिर कैसे करूंगा एक्स्ट्रा। यानी वो अलग बहाने मार रहे थे, जो कुछ भी हो, लेकिन जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, भक्ति करता है, तो उसका अपने आप उत्साह रहता है। ये स्त्रियों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। लेकिन भोग में पड़ना, आपने महसूस भी किया, भोग पर पड़ते ही ऐसा लगता है कि अग्नि के ऊपर किसी ने पानी डाल दिया। जो उत्साह है भक्ति का वो डाउन हो जाता है। भक्ति तो चले जो है सो है, लेकिन भक्ति का उत्साह है वो डाउन हो जाता है। हर भक्त उस बात को समझ सकता है, इज इट नॉट। और आप शुद्ध जीवन जीते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा और आगे बढ़ के प्राप्ति करते हैं। भोग में डूबा हुआ व्यक्ति क्या कभी भगवान को प्राप्त किया है? शास्त्र में तो नहीं, आप मुझे बता दीजिए अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूं। भोग में पड़ा हुआ व्यक्ति भगवान की प्राप्ति नहीं किया है। आप कहेंगे जामिल, एक मिनट, अजामिल भगवान की प्राप्ति कब किया? जब भोग में पड़ा हुआ था कि जब भोग का परिहार किया था। सोहम यह्यामी, मैं उस प्रकार का भजन करूंगा, उसके बाद वो अपने क्या कहते हैं ग्रहणी तो नहीं कह सकते, स्त्री है जो भी, उसके पास नहीं गया, वैश्य के पास नहीं गया। ओके, आप लोग शायद अज्ञानी हैं, जूम के डिवोटीज को मालूम करेंगे, भोग में पड़ा हुआ व्यक्ति कौन भगवान को प्राप्त किया? एक है मुचुकुंद महाराज जो सो रहे थे लेकिन भोग में नहीं पड़े थे। उनका तो पहले का वजन है, वो अलग बात है। तो वहां मंगल आरती भगवान ने उनके गुफा में कर दी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कुछ याद आ रहा है, हो सकता है हम कुछ गलत बोल रहे हैं। किसी का भी आप एग्जाम्पल लें, पूर्वरवा का लें या किसी का भी लें, भोग में जब लगे हैं तब नहीं प्राप्त किए हैं, भोग छोड़ करके प्राप्त किए। महान भक्तों की कृपा से हो सकता है। कौन एग्जाम्पल दीजिए? साउथ इंडिया के थे, वैश्य के पीछे आ सकते थे, तो वैश्य के पीछे आसक्ति छोड़ करके भगवान प्राप्ति हुई ना, भगवान के दर्शन कराते तो आसक्ति छूट गई ना, ये कि उसके बाद भी साथ में रहे। धनुर्दास, ठीक है, जो चीज वेस्ट है वे मिलेगी, मिल रही है, वह ईस्ट में जाके नहीं मिल सकती है। मेक सेंस? कर्मी लोग तो ये लोग कई बार लोग बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोले यही कि इफ आई डोंट हैव डिटर्मिनेशन देन प्रभुपाद सेड यू आर एन एनिमल देन। तो डिटर्मिनेशन का, उत्साह, निश्चय, निश्चय का कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, ये बहुत लाभकारी है। अब प्रभुपाद से भी पूछा गया था, सेम प्रभुपाद से पूछा गया, कितना स्त्री संग करना चाहिए, कितना पत्नी के संग करना चाहिए? कहते हैं एक महीने में एक बार और वह संतान उत्पत्ति के लिए। तो कहते हैं बेटर अब छोड़ ही दे, कहते हैं दैट इज अ पॉइंट। ये प्रभुपाद जी की बहुत फेमस बात है, दैट इज अ पॉइंट। और लोगों की सब बातें बड़ी ही रिवोल्टिंग लगती हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे कहीं उत्कृष्ट सुख है भगवान के भजन का, कहीं अधिक उत्कृष्ट सुख। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, बहुत तुमको आ सकती है, 24 घंटे कर सकते हो क्या तुम? ये लेक्चर में प्रभुपाद जी इस बात को बोल रहे हैं, नहीं, गुरु महाराज बोल रहे थे कि इफ सेंस ग्रेटिफिकेशन वुड हैव मेड पीपल हैप्पी देन द प्रोस्टिट्यूट्स मस्ट बी मोस्ट हैप्पी बट दे आर मोस्ट मिजरेबल। भोग करके कभी व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। जो गीता में भगवान बोल रहे हैं वो सत्य है। क्या श्लोक है वो? मात्रा स्पर्शस्तु न संस्पर्श, यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमति भुवः। ये आती महाराज तो बोली चुके, कितने सारे धारण है, ये बारंबार धारण क्यों दिए जा रहे हैं? ताकि हम लोग जो भोग में आ सकते उसको त्यागें, भगवान के भजन में लगे। कर्मी लोग आत्म तत्व से बहुत कुछ विहीन होते हैं और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। और अगर ऐसे व्यक्ति को बताइए भी तो बोलेगा हाँ हाँ महाराज जी, हाँ हाँ सही, हाँ अंदर क्या बोल रहा है, हाँ 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 आप सही, आप सही कह रहे, हाँ सही कह रहे। Have you ever seen like this? यह मनुष्य जीवन न तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने के निमित्त है, न शुकरों कुकरों की भांति मैथुन में रथ रहने के लिए। मैंने पहले बोल दिया था कि सब बहुत हैवी तात्पर्य है, हमको जो मन में आ रहा है, हम जो सुने हम सब बोलने वाले हैं। तो बड़ा भय लग रहा है कोई केस ना कर दे, लेकिन बहुत गंभीर बात प्रभुपाद कहते हैं। प्रभुपाद को बहुत डर लग रहा है, बोले मैं बोल रहा है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं देखो सुअर यह भी भेद नहीं करता है कि बहन कौन और मां कौन। और आजकल मनुष्य इसी प्रकार की स्थिति को प्राप्त होता जा रहा है। आगे एक्सप्लेनेशन में दे नहीं सकता, लेकिन वैसे is how things are happening this world now. बहुत ही गर्हित जीवन की तरफ जा रहा। प्रभुपाद जी बोले हैं कि देखो पुनर्मूषक बाबा, समझते हैं तुम भगवान को छोड़ दिए हो ना, तो क्या स्थिति है, जंगल के जानवर की तरह तुम्हारी स्थिति हो गई। उस जमाने में लोग इस प्रकार से अंटसंट कार्य कर रहे थे। यह तो भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। मतलब कि मनुष्य जीवन सोचे कैसे हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। आप मेरे मुख से कुछ कठोर निकल रहा हो तो उसको सहन कर लीजिएगा, लेकिन सब श्लोक हैं ही इस प्रकार के। वी आर दे आर हियर टू जोल्ट अस, जोल्ट समझते, इसे कस के हिला दे। तब कभी कभी व्यक्ति जगता नहीं है, पगला हो जाता है, इसको हिला देता है कर सकता तो, हाँ, हाँ, ये हिलाने वाले श्लोक है। तो मेरे मुख से कुछ कठोर निकल जा रहा है, उसको आप अपने हिसाब से ग्रहण कर लीजिएगा। इस तरह कर्मी जीवन रात्रि को सोकर तथा मैथुन में रत रहकर और दिन को संपत्ति संग्रह करने के लिए कठिन श्रम करके बता देते हैं। ऐसा करके वे भौतिकतावादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस पे मैं क्या कहा करता हूं, देखिए, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास एंड दे आर डूइंग थिंग्स एनिमल क्लास, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। खाना जमीन पर बैठ के खाते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाते हैं, कहां अच्छा लगता है? खाना तो खाना ही है, डिपेंड करता है कि आप शांति से बैठ के खा पा रहे हो कि नहीं। बल्कि आप ये भी देखे होंगे, आप सब लोग देखे हैं कि नहीं, सिंपल जमीन पे बैठ करके बढ़िया सा दो आइटम प्रसाद मिल जाए, शांति से खाते हैं कि नहीं। आप लोग का अनुभव होगा, वहां पे गए थे ना हम लोग, चिंता हरण महादेव गए आप लोग हमारे साथ में, सब लोग जमीन पे बैठे, सिंपल सब लोग को प्रसाद दिया गया, कितने शांति से व्यक्ति बैठ के प्रसाद पाता है। वो कभी डायन सुख नहीं दे सकती है, डाइनिंग टेबल। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये मेरा ड्रॉइंग रूम नहीं है जिसमें कोई सोफा नहीं है, बस बड़ा साउंड सिस्टम है, उस पर हम बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं। और आप ये अनुभव करते हैं, करिए अगली बार कभी जाएं, किसी कर्मी व्यक्ति के जाएं और उसके ड्रॉइंग रूम में बैठेंगे तो बात करने के लिए कुछ नहीं, केवल देखने के लिए वस्तु है। हैव यू नोटिस्ड, ये मैं तो कर्मी जीवन में देखा कि ये सजा दिया वो सजा दिया, लेकिन बात करने के लिए कुछ नहीं है। बेटा तुम्हारे नंबर कितने आए, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे करके बात खत्म। और आप लोग सोच ही रहे होंगे कि ये हाँ हाँ फ्यूचर में क्या प्लान है इत्यादि, तो सब खत्म हो जाती बात, और बात सब इन्हीं सब विषयों में चली जाएगी जिसे यहां पे लिखा गया। ऐसा करके भी भौतिकतावादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं, ऊंचा उठता नहीं है। यहां पर भौतिकतावादी जीवन का सारांश रूप में वर्णन हुआ है और अगले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन के वरदान को मूर्खतापूर्वक नष्ट करते हैं। जिस मनुष्य जीवन के द्वारा व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है उसको नष्ट करते, उसको हम कल सुनेंगे। तो हमको ये श्लोक बहुत अच्छा लगा था। ये प्रश्न किसी का है, अगर हमारे अनेक जन्म है तो हमने हमारे पूर्व जन्म में कृष्ण को देखा होगा या नहीं? पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा, भगवान कहां सच सोच पाएगा वो, और भगवान का प्रश्न है। माधावा माधव, मोस्टली कमेंट्स हैं, आप सब लोग क्वेश्चन पूछना भूल गए। प्रभु जी मैं अपने बेबी को कृष्ण भक्त बनाऊंगा, ठीक है, अच्छी बात है, बनाइए, आप खुद जब कीजिए। ओके नथिंग इज देयर, सो विल स्टॉप हियर। कोई हाँ क्वेश्चन पूछने के, अच्छा प्रभु जी प्रेम कृष्ण को क्वेश्चन पूछने के लिए आए अरे आए थे, ठीक है पूछे। एक भक्त बोल रहे हैं सो हैवी क्लास अनेबल टू डाइजेस्ट, टेक महाशंख बटी तनिष पे बताएंगे तो डाइजेशन की अच्छी रहती, वह ग्रहण कर सकते हैं। हाँ बोलिए। देखिए कठिन क्यों है पता है, ये हमारे लाल गोविंद प्रभु बड़ा अच्छा कथा कर लेते, बड़ा हमको बड़ा अच्छा धारण ली, कहते देखो भाई ब्रह्मचारी आश्रम कैसा है, मोटरसाइकिल की तरह है, बिना आपको जाम लगता नहीं पार हो जाओगे, है कि नहीं। लेकिन गृहस्थी कैसी है, कार की तरह, तो इधर के चक्के में अगर पंचर होगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो पति और पत्नी दोनों अगर भक्ति के लिए गियर्ड हैं तो कठिनाई नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति सोच रहा है कि इंद्रिय तृप्ति चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए कि भक्ति चाहिए, तब कठिनाई होती है। मैं उदाहरण दे चुका हूं, क्या नाम है उनका, संकर्षण प्रभु का, और ना कोई संतान हो तो कभी वह स्त्री संग किए ही नहीं, पूरा बलराम हॉल में क्लास हो रही थी, और एंड देन आई कैन सी व्हाई ही इज सो प्योर। आप लोग देखा नहीं कभी संकर्षण प्रभु का, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, क्या चेहरे पे तेज है और प्योरिटी एकदम क्लियर दिखाई पड़ती है। प्रभुपाद उनको लिखे, पता है क्या लिखे प्रभुपाद जी, उनको सब याद रहता है बड़ी तेजी से। प्रभुपाद उनको लेटर में लिखे दीक्षा के बाद कि अब तुम्हें, तुम्हारा दायित्व है कि तुम अपने को इतना योग्य बनाओ कि तुम कृष्ण को साक्षात देख सको। प्रभुपाद जी साक्षात उनको लेटर में लिखे, और कई हजारों लोगों को वह गीता भगवान का ज्ञान दे रहे हैं। रियली बहुत उत्साहित भक्त है, आप कब लोग आइएगा, तो आते हैं तो आप, मैं आप लोग जरूर उनका दर्शन कीजिए। जब भी मैं उनको देखता हूँ उनकी बात वही मुझे याद आती है। हम लोग तो ये प्रश्न कर रहे थे कि भाई शादी किए ही क्यों फिर, एंड मे बी जस्ट बिकॉज माता जी इज हेल्पिंग हिम अदर दैट। बहुत सारे ऐसे गोपी प्रणधन प्रभु शरीर छूंगा छूट गया एकदम, पूरा भागवत में डूबे हुए हमारे मुकुंद दत्त प्रभु प्रॉपर डिसाइपल, देखिए यू कैन देखिए डायरेक्टली सी कि हिज लाइफ इज लाइक जीरो सेंस ग्रेटिफिकेशन। अरे माधव प्रभु को देख लो कितना अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भोग में पड़े हुए व्यक्ति को आप तुरंत देख सकते हो कि भाई उसकी न वाणी में दम है ना उसका भक्ति का उत्साह, कुछ नहीं रहे। यस प्रभु कुछ कहना चाह रहे थे।
अरे कृष्ण प्रभु जी
हाँ,
मुझे बहुत डाउट होता है
मेरे मुझ पे, हाँ बात तो मुझे भी अपने बहुत डाउट होता है। बोलिए,
शास्त्र की एक बात पे डाउट होता है प्रभु जी, की लोग जैसे बोलते हैं कि गृहस्थ आश्रम में धीरे धीरे व्यक्ति प्रगति करेगा, तो कैसे प्रगति करेगा व्यक्ति जब कोई गृहस्थ आश्रम स्वीकार करेगा? तो एक तरफ बोला जाता है कि स्त्री संग नहीं करे, एक बार करे जीवन में या ना करे, और जब करेगा व्यक्ति तो उसका समय निकल जाएगा, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, उसका भक्ति करेगा तो प्रगति के चांस कम मिलता है उसको।
मैंने आपको अभी बताया ना, देखिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं, धर्म अविदिध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अगर अब गृहस्थी में भी है तो इसका अर्थ यह नहीं कि सुबह मंगल आरती का सारा जिम्मा ब्रह्मचारियों के लिए है। स्वयं मंगल आरती के लिए उठे, जप करें, परिवार में जो भी बच्चे होते हैं वे भगवान की भक्ति करें। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं, सुबह अगर जप करने के लिए, श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता का अध्ययन करने के लिए बिताता है और शाम को भी इस प्रकार से बिताता है तो गृहस्थ आश्रम छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवद गीता 13वां अध्याय, तात्पर्य रामकृष्ण प्रभु ढूंढ के बताएंगे हम। ओके, टुमारो योर थीसिस, यस, पढ़े होंगे तात्पर्य। अब इसका मतलब ये नहीं कि अंत तक छोड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी देखो हर जगह पढ़ना होगा। तीसरे स्कंद में आप पढ़ेंगे कर्दम मुनि के बेटे कौन है, कपिल देव, बॉलर नहीं भगवान कपिल देव, फिर भी वह घर छोड़ करके संन्यास लिए हैं, तो वह भी बात है। लेकिन गृहस्थी में कैसे रहना ये बताइए कि युधिष्ठिर महाराज गृहस्थी में नहीं है क्या, क्या नाम इनका, अम्बरीश महाराज नहीं है, ठीक है, लेकिन सभी को भगवान की भक्ति में लगा के चलना चाहिए, ये बात रहती है। अब एक प्रश्न होगा क्या भक्ति में लगाने के लिए शादी करते हैं। देखिए ये एक बहुत अच्छी बात, मैं इसका बैलेंस उत्तर देना चाहता हूं। हर जीव पूर्व अपने जीवन से चल रहा है, कुछ लोगों का ब्रह्मचारी का संस्कार होता है, वो भक्ति में ना भी आए उनको शादी करने की इच्छा नहीं होती, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां, तो प्राय नहीं करते हैं, लेकिन लड़के लोग ऐसे होते हैं कि भक्ति में ना भी हो तो भी उनकी शादी करने की इच्छा नहीं होती, और जो भक्ति में आ जाते हैं तो उसे कंटिन्यू करने लगते हैं। और सामान्यतः सभी लड़कों की इच्छा होती है कि हम शादी करेंगे, तो आप अगर उनको जबरदस्ती उसमें लागेंगे ब्रह्मचारी आश्रम में, वो नहीं रह पाएंगे। उनको एक मतलब समझ रहे ना, एक इमोशनल बैकअप चाहिए होता है। मेक सेंस टू यू, मे बी नॉट मेक सेंस टू यू बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट सेटअप, हर एक का इंजन अलग अलग है, इसके लिए किसी को इंजन समझ गए ना, सबका अलग अलग सेटअप है। इसके लिए प्रभा जी बोले ना, आप हम भागवत में पढ़े थे ना, ऑल द मैन मस्ट बी मैरिड, पढ़े थे कि नहीं, बल्कि 24 साल में लड़का की उम्र होनी चाहिए और लड़की की उम्र 16 साल, ऐसा बताया गया था। चलो अभी लॉ यहां का अलग है तो 18 मान के चलिए, 18 और 26 कर लीजिए जो भी, इससे वो स्टेबल होकर के भगवान की भक्ति कर पाते। लेकिन वो भगवान की भक्ति करने की ट्रेनिंग होनी चाहिए दोनों के। तो एक समाज को अगर आप पूरी तरह से देखेंगे, सभी के लिए भक्ति अगर है तो ऐसा नहीं कि वो अनियमित भोग करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आप ये ऐसे नहीं कह सकते कि सभी को ब्रह्मचारी का नेस्टिक ब्रह्मचारी रह पाएंगे, ये उनकी खुद की चॉइस रहती। लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, शादी करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन धर्म छोड़ करके, भक्ति छोड़ करके भगवान विष्णु को भूल ना जाए कंडू ऋषि की तरह की, आज 900 साल बीत गए आज गायत्री नहीं किया, ऐसा करने के शास्त्र नहीं बोल रहा। डज दैट मेक सेंस? आपने सुना नहीं महाराज का प्रवचन अभी जो गृहस्थी धर्म के बारे में हो रहा था, अभी परम पूज्य वृंदावन महाराज बोले ना, कर्ता भवन की भावना को त्यागे और भगवान के बारे में नियमित रूप से श्रवण करे तो गृहस्थ भी पाल हो जाएंगे। और महाप्रभु से पूछा गया तो क्या बताए, असत संग त्याग करो, गलत लोगों का संग नहीं करो और भगवान के नाम का क्षमा कीजिएगा, भगवान के नाम का संकीर्तन और वैष्णवों की सेवा, ये दो कार्य उन्होंने गृहस्थों को बताए। और अभी अभी पार्थ प्रभु ने बताया था ना, किसने बताया था, धनुर्धर के साथ आपने बोला था ना, धनुर्दास इतने प्रिय हो गए, ऐसे वेश्या में आसक्त थे, लेकिन जब रामर जी चार जी उठ करके गोदावरी से स्नान करके बाहर निकलते तो वह हाथ पकड़ के उनको उठाते। आगे जाके बात और कथा सुन चुके हैं, सुने ही होंगे। तो इसलिए वैराग्य केवल बात बोली जाए गृह ब्रह्मचारियों की में ही हो ऐसा नहीं कहा सकता, वैराग्य व्यक्ति के आश्रम पर डिपेंड नहीं करता है। तो जिसकी जैसी व्यवस्था है, उसका मन जिस प्रकार से जिस आश्रम में रहने के लिए है उसके अनुसार उसको स्वीकृति देनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो शुद्ध भक्त नहीं है। मेक सेंस? प्रभुपाद जी के तो 6 क्या नाम है गृहस्थ भक्तों ने ही लंदन में क्रांतिकारी प्रचार किया। और प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि नहीं, माई गुरु महाराज मेड आर्मीज ऑफ सन्यासीज एंड ब्रह्मचारी, आई मेड आर्मी ऑफ गृहस्थस। सो इट्स अ मैटर ऑफ डेवलपिंग रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड। लेकिन हाँ, किस चीज के प्रति हमें घृणा होनी चाहिए, गलत भावन गलत निंदनीय है कि बस भोग, चाहे वो ब्रह्मचारी जीवन में हो और चाहे, खैर ब्रह्मचारी जीवन में तो भोग न्यूनतम ही है, लेकिन चाहे वह गृहस्थी में लाइसेंस जरूर है लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कुछ कहना चाहते हैं और
प्रभु जी? हाँ, हम क्या गृहस्थों से कई जैसे हम मिलते हैं हमें पता चलता है भी वो कैसे, जैसे मैं बनारस गया आपको मैं बता रहा था एक प्रभु जी हैं और मुझे मेरा शिष्य है, मैंने अपनी आंखों से देखा और रात को 9 बजे आए, सुबह 4 बजे उठे, मंगल आरती की पूरी फैमिली के साथ, फिर उन्होंने 2 घंटा जप किया, फिर 1 घंटा भागवतम पढ़ा, फिर 1 घंटा गाय की सेवा किया, फिर वो ऑफिस गए, उनका डेली रूटीन है, और वैष्णव की सेवा बड़े बड़े महाराज उनके घर रुकते हैं। फिर एक मदुरई में एक एग्जाम्पल है, मैं उनके घर गया था, वो प्रभु जी की 25 सोने की दुकान है, 25 सोने, बहुत अमीर आदमी है वो, उन्होंने अपना एक कृष्ण बलराम मंदिर बनाया इस्कॉन जैसा एकदम स्टैंडर्ड एकदम, वो प्रभु जी ब्रह्मचर्य आश्रम में अभी भी चटाई बेस होते हैं, उनका इतना बड़ा बंगला है, सब कुछ है, वो कह रहे मेरे को अच्छा लगता है, और मतलब प्रसाद बहुत सारी सेवा करते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम देखते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं अभी गरज सारा।
फिर समझिए मेरी बात कि गृहस्थ भोग में पड़ा हुआ वो निंदनीय है, उसकी आयु व्यर्थ जा रही है, लेकिन श्रीमद भागवत हम पढ़ रहा है जब कर रहा है तो फिर कोई कठिनाई नहीं है, मतलब बस खाली बच्चे बायोलॉजिकली पैदा होगा इसका मतलब ये नहीं कि वो आश्रम आश्रमाइट नहीं हो सकते। मेक सेंस टू यू, मैंने क्या बोला समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया, मैं आश्रम यहाँ ब्रह्मचारी आश्रम चला रहे हैं तो 2-4 बच्चे पैदा हुए, मतलब सेंस नए बच्चे आए, आए कि नहीं आए, सब लोग भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, आप प्रोसेस कर पा रहे हैं ठीक है कि नहीं? तो अगर हम बायोलॉजी के लिए बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, प्रीचिंग के द्वारा या लोग जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो वो छोटे बच्चे की तरह कि नहीं, लिटरली छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटे बच्चे को पता नहीं होता पॉटी कहाँ करनी होती है, न्यू डिवोटी को पता नहीं होता क्या करना होता, कुछ भी करता रहता है, सहन करना पड़ता, सिखाते हैं कि नहीं सिखाते, बस बायोलॉजी के लिए नहीं कर रहे, तो जो बायोलॉजिकल बच्चे होते हैं फिर उनको भक्ति क्यों नहीं कराई जाए? आप मेरी लॉजिक समझ रहे हैं? तो जो व्यक्ति गृहस्थी में जा रहा है वो भगवान की भक्ति करे, खुद भक्ति करे, और बच्चों को मेरे एक बात जी उनको बोले, हमारा लड़का हमको हम बोले हैं कि आपकी क्लास में आए, वो खुद कभी नहीं आती, तो कभी लड़का कैसे आएगा बताओ? आप स्वयं आओगे तब तो बच्चा आएगा। आप कह रहे हो कि मेरे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और कार्य, इसलिए भागवत नहीं आ सकते, तो बच्चे को क्यों भेज देंगे? बच्चा कैसे आने वाला है? मैं कभी किसी को शिक्षा देता हूं तो बिल्कुल पिताजी की तरह देने का प्रयास करता हूं, पहले मैं देखता हूं कि क्या मैं कर पा रहा हूं, जब मैं नहीं कर पा रहा तो मैं सामने वाले को दूंगा क्यों, और अगर दूंगा भी तो वो सुनेगा क्या, ये समझ लीजिएगा, हम स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे को नहीं बोल सकेंगे, और अगर बोल भी देंगे तो वो सुनेगा नहीं। मेक सेंस? तो गृहस्थी में रहकर माता पिता भगवान की भक्ति कर रहे, प्रभुपाद जी अपने पिताजी को प्योर डिवोटी बोले हैं कि नहीं, कहां बताइए, कहां? कृष्णा बुक में शुरुआत पे, तो सिंपल कपड़ा बेचने वाले थे, सी ठीक है, तो ये एक बैलेंस्ड मिलना चाहिए। और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, वैराग्य प्राप्त करने के लिए भोग करना जरूरी है? नहीं, वैराग्य प्राप्त करने के लिए भोग करना जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह भी कि गृहस्थी के अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो दुखी दुख को अनुभव भी करना होता है व्यक्ति को, दुख नहीं होता तो क्यूरियोसिटी बनी रहती है, और बार बार समझिए भोग है उसमें, लेकिन अगर किसी की भोग की इच्छा है तो क्या आप दबा देंगे? और आप मान लो कितना भी बोल लीजिए, क्या वो आपको मतलब हम कितना भी बोल लें तो क्या सब लोग मान जाएंगे? ये बात हमको समझनी होगी कि वेद भागवत ये एक बहुत बड़े सब बड़े सभी जीवों को अपने अखबार समझते हैं, अखबार मतलब गोद में लेकर के उनकी प्रगति कराना चाहते हैं। ये आप शायद ध्यान नहीं दिए, आत्मा किस प्रकार से विलग हो सके पदार्थ से, ये वेद का उद्देश्य है, पढ़ा था कि नहीं अभी आपने? तो अब उसकी जो स्थिति है उसके उससे वो कैसे डेवलप कर सके? मैं उदाहरण पहले दे चुका हूं कि देखिए हमारे इलाज में जो तनिष्क प्रयोग कर रहे हो कहते हैं कि आप जल्दी ठीक होना चाहते हो तो फ्रूट्स पे आ जाओ, हमने कहा हम ठीक होना ही नहीं चाहते, हम नहीं कर सकेंगे ऐसा, तो कहते ठीक है दाल रोटी खा लोगे, हमने कहा हाँ दाल रोटी खा के रह सकते हैं। डज दैट मेक सेंस? सबसे अच्छी इनकी एडवाइस ये है कि मैं फ्रूट्स पे रह जाऊं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, तो सबसे अच्छा तो अच्छा है कि कभी शादी करे ही नहीं, सबसे अच्छा है, लेकिन ऐसा लोग करेंगे नहीं क्योंकि हमसे नहीं हो सकता, ठीक है, जब हो ही नहीं सकेगा वो छोड़ देगा तो कम से कम जहां पे है वहां से शुरू करे ना। मेक सेंस? ठीक है, ये सोसाइटी है मठ नहीं है। विल स्टॉप हियर। गृहस्थी इज इक्वल टू ट्रैक्टर, आई डोंट नो, आई नेवर हर्ड दिस। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भागवतम की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे। एक